गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर
दर्शकों, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत अलौकिक सत्संग प्रवचनों ने हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में एक आध्यात्मिक ज्ञान की क्रांति ला दी है। लाखों श्रद्धालुओं ने हमें इन सत्संगों के प्रसारण के लिए बधाई पत्र भेजे हैं। इसके साथ साथ कुछ श्रद्धालुओं ने कुछ शंकाएं भी हमारे को भेजी हैं। हमने उन सब श्रद्धालुओं की शंकाओं के निवारण के लिए संत रामपाल जी महाराज से भेंट की तथा महाराज जी से उन सभी शंकाओं का निवारण जाना जिसकी जिज्ञासा हमारे दर्शकों में बनी हुई है। तो आइए अब जानते हैं परम पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से आपकी हर शंका का समाधान। महाराज जी, क्या श्री ब्रह्मा जी रजगुण, विष्णु जी सदगुण, शिव जी तमोगुण है?
गुणात्मा रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी हैं।
महाराज जी, इसका प्रमाण कहाँ है?
गुणात्मा अब यहाँ ये सिद्ध करते हैं कि रजगुण क्या है, सदगुण क्या है, तमगुण क्या है। देखिएगा, ये मार्कंडेय पुराण है, अपने सदग्रंथों से हम सिद्ध करेंगे और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, वही की वही उसी तरह। और इसके 123 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। ये है 122 से शुरू करेंगे हम, संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। यहां मार्कंडेय जी अपना ज्ञान बताते जा रहे हैं। मार्कंडेय जी बोले मुने, इस अब हम 123 पे पढ़ रहे हैं, 123 पे। अब यहां मार्कंडेय जी बोले मुने, रजगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्तो प्रधान विश्वपालक विष्णु, यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी को देना हो वह मुक्ति। सिद्ध होगा रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु और तमगुण शिवजी, यही तीन देवता और यही तीन गुण भी कहे जाते हैं। और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देखिएगा, यह है श्रीमद देवी भागवत, इसमें संस्कृत भी साथ है, ये है अथ देवी भागवतम सभाष टीकम से मातम खेम राश्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई 4। इसके हम आपको तीसरे सकंद में ले चलते हैं, ये देखिएगा। श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद है प्रारंभ ते, या देखना इसके ये प्रश्न नंबर 11 पे तीसरे सकंद में और अध्याय नंबर 5 का हम श्लोक नंबर 8वां पढ़ेंगे, 7वां है समाप्त होता है। हे माता, शंकर भगवान कह रहे हैं, हे माता यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार पर धान किया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सत्गुण युक्त किए, क्यों किए। अब संस्कृत भी देखेंगे, ये संस्कृत है, ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना सदाम्बी के कथम अहम विहित, मैं क्यों बना दिया, क्यों उत्पन्न कर दिया तमोगुण और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया। और सो विहित किमो सतोगुणो हरि, विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। और इस गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री देवी भागवत के तीसरे सकंद से और क्लियर कर देते हैं। सुचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, और गीता इसके संपादक मान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहां से प्रकाशित है। इसके तीसरे सकंद पर आपको थोड़ा सा पढ़ाते हैं, 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंद। विष्णु जी कह रहे हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हें से उद्भासित हो रहा है अपनी माता दुर्गा के बारे में। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। विष्णु जी कह रहे हैं हमारा आविर्भाव मन जन्म, त्रोभाव मन मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। शंकर भगवान बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुमसे उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे पालक हुए, फिर मैं तमोगुण लीला करने वाला तमोगणी तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो, इस संसार की सृष्टि सतीति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी। नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते कि देवी भागवत के इस चंद पंक्तियों ने चार कंसेप्ट क्लियर कर दिए। ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, और ये तीनों इसके पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी हैं। और ये भी स्पष्ट कर दिया कि हम केवल जो हमें आदेश होता है नियमित ही काम कर सकते हैं, हम किसी का संस्कार घटा बढ़ा नहीं सकते, और ये सिद्ध हो गया रजगुण ब्रह्मा है सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी।
महाराज जी, गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12-15 में तीनों गुणों के उपासकों को राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच कहा गया है, इसका क्या अभिप्राय है।
गुणात्माओं, 7वें अध्याय के 4 मंत्र पढ़ेंगे, 12-15। अब देखिए ये तो सिद्ध हो गया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, नथिंग एल्स। ये देखिएगा श्रीमद भगवद गीता अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 12। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझ से होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब यहां इसने क्या कहा है कि रजगुण ब्रह्मा से सतगुण विष्णु से तमगुण शिव जी से जो कुछ भी हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, क्योंकि रजगुण के ब्रह्मा जी के अंदर एक ऐसा गुण भर दिया इसने, जीव के बस की बात नहीं, उसके प्रभाव से उत्पत्ति संतानों उत्पत्ति करेगा ही करेगा। और विष्णु जी ने सतोगुण ऐसा भर दिया सब एक दूसरे मोह ममता जकड़े रहे, ये यहां फंसे रहे, और तमोगुण का अपने बेरा शंकर जी के काम कराए, ये सब न मार के अपने पिता के पास भेज देता है। ये कहता है इन तीनों गुणों से जो कुछ हो रहा है, रजगुण धर्मा सतगुण तम गुण शिव जी से, इसका मुख्य कारण मैं हूं, क्योंकि इसको 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नितार करना पड़ता है, सूक्ष्म शरीर को भून कर खाता है, इसलिए कहता है मैं इन में नहीं और ये मुझ में नहीं, और ये जो कुछ भी हो रहा है इसका मुख्य कारण निमित्त कारण मैं ही हूं, मुझ से ही हो रहे। अब आगे देखना, अब 13वें श्लोक में क्या कहा, 7वें अध्याय का, अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 13, गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस इन तीनों प्रकार के भाव से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से पूर्व यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब ये देखिएगा, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, संपादक है इसके, ये देखिएगा, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, और ये कहां से, ये यहां से प्रकाशित है, ये है रुद्र संहिता, रुद्र संहिता और संक्षिप्त शिव पुराण पृष्ठ नंबर 110 पे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीन देवताओं में गुण हैं, यानी रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शंकर, इन तीन देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए वो इन तीनों से अलग हैं। 26वें पढ़ते हैं, अपने मतलब की बात पढ़ेंगे, यहां आगे हम नीचे, पुत्रों ब्रह्मा और विष्णु को ये काल बोल रहा है, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक दो कृत यानी जो दो विभाग, ये दो जॉब प्राप्त किए हैं, और ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, मैं नहीं है, ने दो अत्यंत उत्तम कृत संहार और त्रोभाव प्राप्त किए। अब देखो ये ब्रह्मा विष्णु तो ये हो गए दोनों पुत्र, रुद्र और महेश्वर ये इन दोनों से न्यारे यानी चार हो गए, और बोलने वाला वो इनका पिता इनसे अलग है। इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सगुण विष्णु तमगुण शिव जी से परे दास ने आपको दिखा दिया श्री शिवपुराण के अंदर कि इनका बाप है यू। ये खुद कहता है ब्रह्मा विष्णु पुत्रो तुमने दो विभाग मेरे से प्राप्त किए हैं, इसी प्रकार रुद्र और महेश्वर ने प्राप्त किया, महेश्वर ने तो ये पांचवा है इनका बाप, ये बोल रहा है यहां पर। अब ये कहता है कि ये तीनों गुणों ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित है, ये मुझे भी ना जानते, मेरी भक्ति भी ना करते। आगे देखो 7वें अध्याय का श्रीमद् भगवद गीता का 14वां श्लोक में क्या कहा है, क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत तरगुण भी बेरी माया रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी द्वारा फैला गया जाल बड़ा खतरनाक है, ये दुस्तर है, और जो पुरुष मुझ को भजते हैं यानी ब्रह्म साधना करते हैं वो इनसे ऊपर उठ जाते हैं, माया को उल्लंघन कर जाते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करने वाले ब्रह्मा लोक विष्णु लोक शिव लोक में जाएंगे, उनका कम समय होता है, और जो ब्रह्म की साधना करता ब्रह्म लोक में जाता उसका समय ज्यादा होता है, वह सुख भी ज्यादा ब्रह्म लोक में, लेकिन वह पूंजी कटती है अपनी ही, और पूंजी समाप्त होते ही पुण्य खत्म होते ही फिर वापस 84 लाख योनियों में आना ही पड़ता है। तो ये तो इनका प्रोसेस है, ये कभी समाप्त नहीं हो सकता, और फिर इसलिए ये कह रहा है कि उस परमेश्वर की शरण में जा, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। तत्वदर्शी संत बताओगे, मैं नहीं जानता उस मेथड को, वो तरीका वो बताओगे, वो ज्ञान वो बताओगे। तो रामपाल दास वो तत्वदर्शी संत, सारा दाना दाना गिनवा दिया। अब ये कह रहा है कि जो इनको छोड़कर ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर मेरी साधना करते हैं इस माया ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं, जैसे मार्कंडेय ऋषि बंगाल की खाड़ी में तपस्या कर रहा था, ओम नाम का जाप जपा था, जब इंद्र उसके पास गया तो उसने यही कहा था कि इंद्र ये इंद्र की पदवी छोड़ दे और अब मैं बताऊंगा साधना ब्रह्म लोक की साधना कर ले। तो कहते एकादा व्यक्ति मेरी साधना भी ना करते, अगर मेरी साधना करे तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश वाले सुख से ज्यादा लाभ मिल जाए। अब ये क्या कह रहा है कि अब देखो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 का हम श्लोक नंबर 14 पढ़ा है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अद्भुत त्रिगुण में मेरी माया ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा फैलाया हुआ जाल बड़ा खतरनाक है, दुष्टर है। जो पुरुष मुझको यानी ब्रह्म की साधना करते ये इनसे ऊपर उठ जाते हैं, तर जाते हैं। 15वें श्लोक में कहा कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी की जिसकी बुद्धि उठती नहीं वहीं तक सीमित है, जिनका ज्ञान वो असुर स्वभाव राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मूर्ख मुझको नहीं भजते। पुण्यात्माओं इस गीता की पढ़न मात्र से मोक्ष बताया करते, इसमें लिखे मात्र करेंगे जब होगा मोक्ष, जो इसमें लिखा है ऐसे करेंगे तभी मोक्ष होगा। उसकी जानकारी आपको दी जा रही है कि इसमें यह लिखा है ऐसे करना चाहिए, दो अक्षर की बात है वह निर्णय। अब हम क्या बताया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने साधना करने वालों को राक्षस स्वभाव को धारण किया मनुष्यों में नीच बुरे कर्म करनिया करने वाला दूषित कर्म करने वाला मूर्ख क्यों कहा, ये थोड़ा संक्षेप में बताएंगे। जैसे अरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की उपासना की थी, विष्णु जी का दुश्मन मानना था अपने आप, और ब्राह्मण भगत था ब्राह्मण था लेकिन कर्म से राक्षस कर्म से ब्राह्मण होता है। कहते हैं हिरण्याकश्यप छाती तड़वाई और ब्राह्मण बना और कर्म कसाई, ब्रह्मा जी की भक्ति करी वरदान पा लिया, सुबह मरु ना शाम मरु फलान मरु ना दकड़ मरु, अपने पुत्र प्रहलाद का दुश्मन हो गया, वो भगवान की भक्ति करता था, अंत में राक्षस कहलाया और कुत्याली मौत मारा गया, पाड़ के फेंक दिया उसको पेट से। तो हुआ रजगुण का उपासक राक्षस कहलाया और कुत्याली मौत मरा। फिर तमोगुण के उपासक थे श्री, जैसे तमोगुण शंकर भगवान के उपासक थे एक रावण श्रीलंका के राजा, और रावण जैसी भक्ति थे शिव के उपासक 7 जन्म नहीं कर सकते, चलो यहां से काट के समर्पित कर दिया अपने देव के चरणों में, वर्क डन ये भगवान दे सकते हैं, उसका शरीर फिर दे दिया न्यू का न्यू, क्योंकि उसके सांस शेष थे आयु शेष थी, ये आयु नहीं बढ़ा सकते, आयु केवल कबीर परमात्मा बढ़ा सकते हैं, परम अक्षर ब्रह्म बढ़ा सकते हैं। इससे खुश होकर शंकर भगवान ने उसको रिद्धि सिद्धि दे दी, फूल गया, राक्षस कहलाया और कुत्याली मौत मारा गया। ये सर्वविदित है कैसी बुद्धि भ्रष्ट हुई इसकी, प्रायस्त्री को उठा लिया, शर्म नहीं आया सूरवीर होकर प्रायस्त्री को उठावे, और फिर कैसे उसकी दुर्गति को प्राप्त हुआ, तो राक्षस था 100 जोटियां का मांस खा जाया करता, 100 दारू के मटके शराब के मटके पिया करता, खाकता फिर वो। तो कहते हैं तीनों गुणों की जो पूजा करते हैं उनकी बुद्धि ठिकाने आ ही नहीं सकती, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। भस्मागिरी नाम के एक तपस्वी थे भगवान शंकर के उपासक, ये गिरी पुरी नागा नाथ कनपैडे ये सारे जो है शंकर जी के उपासक होते हैं। एक भस्मागिरी नाम का तपस्वी और भगवान शंकर के महल के सामने कैलाश पर्वत पे ऊपर न पैर नीचे न सिर करके भक्ति करने लग गया, 12 वर्ष तक खड़ा रहा। एक दिन पार्वती जी ने कहा कि आप तो भगवान हो, देवताओं के देव हो, महादेव हो, सक्षम हो, समर्थ हो, आपका बच्चा क्या मांगता है पुजारी, दे दो इसको, उठाओ यहां से। भगवान शंकर ने कहा कि बोल भाई क्या मांगता है भस्मागिरी। भस्मागिरी ने कहा कि भगवान ऐसे नहीं मांगूंगा, पहले वचनबद्ध हो जाओ। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, मैं वचनबद्ध हो गया, खड़ा हो गया। फिर आप अपना भस्म कड़ा दे दो, जो आत्मा पर रखा था उसमें शक्ति थी कि किसी के सिर पर ऊपर न्यू कर दे भस्म, वो खत्म हो जाता था, जल जाता था, राख बन जाती थी। और भस्मागिरी के मन में के दोष था भगवान शंकर का उपासक कि भस्म कड़ा प्राप्त करके और पार्वती पे आसक्त था वो, पार्वती ने पत्नी बनाऊंगा और इस शंकर न मारूंगा। और इसको अमंत्रयामी कहा करते शंकर भगवान ने। खाक अंतर्यामी था, इसको दिके को बदले का बैठा सामने, उसे अपना दुश्मन पाड़ दिया, निकाल कर भस्म कड़ा दे दिया, ले भाई ले जा, अकले शंकर ओले होशियार, इसलिए मैंने यह साधना करी थी, तुझे मारूंगा और इसको अपनी पत्नी बनाऊंगा। हा 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 हो गया रक्स। अग अग भगवान और पीछे पीछे पुजारी जाख काट उठा। जिसको हम अविनाशी कहा करते थे, शंकर भगवान अविनाशी, अविनाशी होता तो खड़ा रहता, काजा करे मार के करेगा। कबीर भगवान थे अविनाशी, दरिया में गेर दिया गंगा के अंदर, और तोब के गोले चला दिए, छींट तक नहीं लागी परमात्मा के, शेख तक इन 10 टुकड़े कर दिए थे मालिक के रात ने शरीर के, तलवारों से गुंडे ले जाके, और चलन लगे जब खड़े हो गए परमात्मा, और कहा शेख तक ही आ जा, चाह पानी पी के जाइए, पसीने आ गए तो उन गुंडा के। तो शंकर भगवान आगे आगे और उसका पुजारी पीछे पीछे, जाकर काट उठा, टैर बाजता दा शंकर भगवान का। अब भगवान ने दया करी, बीच में आकर खड़े हो गए खुद परमेश्वर पार्वती रूप बना के, और कहने लगे भाई डट जा, कहां जा रहे, आ जाओ, मैं भी तो आपके लिए तड़प रही हूं। खड़ा हो गया जो मूर्ख, और कहा कि शंकर भगवान तो 100 किलोमीटर तुरा डटेगा नहीं, तू चिंता ना करें। वो खड़े हो गए तो पार्वती कहने लगी कि मुझे डांस करके दिखा। पार्वती रूप में परमात्मा थे, तो उसने कहा देखो मैं तो तपस्वी आदमी, मैंने डांस करना नहीं आता। पार्वती रूप में भगवान बोले ला मैं सिखाती हूं, इस पैर को आगे कर, इसको पीछे कर, डो 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 डो, फिर इसने ऊपर कर, इसने नीचे कर, जब वो सरपा आ गया और कर ऊपर, जिस हाथ में कड़ा ले रहा था ना वो सरपा आ गया, उस पोड़ी बूझ के जब कह दिया भस्म, भस्मा गरी वहां खत्म हुआ। उसके बाद वो भस्मा असुर कहलाया, भस्मा असुर राक्षस, जब वो कड़ा लेकर शंकर भगवान के आज्ञा प्रगट हुए परमात्मा विष्णु रूप धारण करके। शंकर जी बोले विष्णु जी पागले, बात बिगड़ गई। परमात्मा बोले क्या हो गया भाई, कैसे ऐसे उसने जुलम कर दिया, मेरे साथ धोखा कर दिया, कोई बात नहीं उसको मैंने मार दिया है। अक नहीं नहीं ऐसे कैसे मार दिया, वो तो मरने वाला था, उसके पास तो कड़ा है कि ये कड़ा ले तेरा। कैसे लाए, तब रुके जब कड़ा देख लिया कि कैसे लाए, कि नो ना पूछा कैसे लाए, तू चल वापस आप चलो। जब उस भस्मा गिरी की राख देख ली ना, जब शंकर भगवान के दिल की वो पलस ठीक हुए और धड़कन ठीक हुई, तो पुण्यात्मा हम कांडड़े डुआ रखे थे मूर्खा न मारे, और परमात्मा कहा करते तीन देव की तो करते भक्ति, उनकी के देना हो भक्ति। अब विष्णु भगवान की और कथा सुना दू। एक बार कुंभ का पर्व हुआ हर की पैड़ी हरिद्वार में, और जहां ये कुंभ का पर्व होता है इनकी दंत कथा लोक वेद यो मनमाना आचरण है वैसे तो ये सारे के सारे अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं, पूरी अलग, गिरी अलग, नागा नारे वैष्णो अलग से, नाथ नारे कनपाड़े अलग से। तो ऐसे ही उस दिन नागा अपने ग्रुप में, विष्णु अपने, वैष्णो अपने, विष्णु के उपासक वैष्णो कहलाते, और सभी जिस दिन ऊपर भी लगनी थी स्नान करना था, सबसे पहले नागा पहुंच गए हर की पैड़ियों पर, 10-15 हजार थे वे। पीछे से वैष्णो साधु का ग्रुप आ गया, विष्णु जी के उपासक सतोगुण के, उन्होंने नागाओं से कहा कि नागाओं जो शिव के उपासक थे तमोगुण के, कि तुम पहले स्नान नहीं करोगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, विष्णु जी के उपासक हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी, हम वस्त्र भी नहीं रखते तन पे, हम प्रथम स्नान करेंगे। तो वैष्णु साधुओं ने अपशब्द बोल दिए उनको कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, पशु की तरह नंगे फिरके हो, टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, शर्ट फेड़ो, राख लपेटे रहते हो शरीर के ऊपर, आज तुम स्नान करने वाले हो गए, प्रथम हम स्नान करेंगे। इसी बात पे उनका झगड़ा हो गया, कत्लेआम कर डाला उन्हें। 25,000 वो शिव ये त्रिगुण उपासक, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के उपासक कटकर मर गए, कतलेआम कर दिया 25,000, गंगा का पानी लाल कर दिया, वहां 100 बहा दी। तो सूक्ष्म वेद में कहा कि तीर तुपक तलवार कटारी, ओहे तीर तुपक तलवार कटारी, ये दर्द दर जोर बधावे हैं और हर पैड़ी हर हेत ना जाना, वहां जाते एक जलावे हैं। ओहे देखो, कहते हर की पैड़ी कहो भगवान का घाट स्थान बताते हो, और भगवान के घाट पर तुमने कतलेआम कर दिया, तुम अकल है तुम्हारे अंदर। हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, भगवान में प्रेम नहीं तुम्हारा, और वहां जा तेग चलावे हैं और कट शीस नहीं दिल करुणा, करुणा माने दया नहीं दुष्टों के, और ये जग में साधकवावे हैं, और जो जन इनके दर्शन भी करने जावे उन भी पाठ पढ़ावे हैं, उनको भी नरक पठावे। तो पुण्यात्मा इसलिए गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में कहा कि इन तीनों गुणों की जो पूजा करते हैं, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच तुषित कर्म करने वाले मूर्ख कहलाए हैं। 4 गाली कट्ठी दे रखी गीता जी, और वहां इतना चौड़ा रास्ता था हर की पैड़ी पे, और बैठ कर एक देखो, हम वैसे स्वाभाविक व्यक्ति भी कहीं स्नान कर रहा हो और कोई व्यक्ति आ जा पाछे तक भी, मैं भी ना लो, आज आप भी ना लो, लो। आम आदमी से गिरा हुआ चरित्र इन लोगों का, और इनको साधु संत कहते हैं। तो इन तीनों गुणों के उपासक कहते राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। तो इस प्रकार इनको 4 उपमा दी है, और पुण्यात्मा थारा तो भाग जा गया, अपना कल्याण करवा लो।
महाराज जी, गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय 7 के श्लोक 18 में अपनी गति को अनुत्तम क्यों कह रहा है, तथा उत्तम और अनुत्तम का क्या अर्थ होता है?
पुण्यात्माओं, जैसे अभी तक किसी भी हम अपने धर्म गुरु से पूछा करते थे कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को अनुत्तम क्यों कह रहे हैं, अनुत्तम, तो ये क्या कहते हैं कि अनुत्तम नहीं कह रहे हैं, अनुत्तम का उन्होंने अर्थ बदल दिया, कहते जिससे उत्तम कोई और ना हो वह अनुत्तम कहलाता है। रब फूटे भाग हमारे, ऐसे गुरु मिले हमें अनुत्तम, अनुत्तम माने बैड अंग्रेजी में, और उत्तम गुड श्रेष्ठ, कहीं पर बैड लिखा हो किसी सेंटेंस में और उसका अर्थ कोई गुड लिख दे तो कितनी बुद्धि होगी उस इंसान की। क्योंकि अब गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 16 से लेकर 19 तक क्या कहा है, आपने गीता खूब पढ़ रखी है, अब सिर्फ एक श्लोक दिखाऊंगा, 7वें अध्याय का 18वां और 19वां दो, उसमें क्या कहा है कि ये सभी मेरी भक्ति, 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा ना, ये मेरी भक्ति, 13वें श्लोक में कहा कि ये मेरी भक्ति भी ना करते, तो अब 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि मेरी भक्ति भी अर्जुन 4 प्रकार के करते हैं, यानी जो ब्रह्म साधना करते हैं वेदों अनुसार साधना करते हैं वो 4 प्रकार के हैं, एक अर्थार्थी, अर्थार्थी माने तो धन लाभ प्राप्ति के लिए जंतर मंत्र भी करता है तो वेदों के मंत्रों से ही अनुष्ठान करता है, वो ओम जय जगदीश रे स्वामी जय जगदीश रे जय गणेश देवा इस तरह की आरती नहीं गाता, वो केवल वेद मंत्रों से ही अनुष्ठान करता है। लेकिन फिर अर्थ माने संकट निवारण के लिए, वो भी वेदों के मंत्रों से ही अपने अनुष्ठान करता है। और तीसरा जिज्ञासु, जिज्ञासु होता घर से निकलता परमात्मा प्राप्ति के लिए, फिर बहुत से संतों के पास से जो ज्ञान ग्रहण करता उसका वक्ता बन जाता है, ये भी काम नकली है, ये तीनों रिजेक्ट कर दिए। और चौथा बताया ज्ञानी, ज्ञानी उसको कहते हैं जिसको ये पता लग गया, आत्म ज्ञान हो गया कि मनुष्य जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त होता है, फिर परमात्म ज्ञान हुआ कि पूर्ण परमात्मा के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, न देवताओं की पूजा से केवल पूर्ण परमात्मा से ही, भक्ति से ही मोक्ष होगा। तो इन संत ऋषियों को, महर्षियों को तत्वदर्शी संत ना मिला, जिस कारण से इन्होंने आप निष्कर्ष करके ब्रह्मा जी से प्राप्त ज्ञान के आधार से ओम नाम को परम अक्षर ब्रह्म का मान लिया, आग के अंगार को बर्फ मान लिया अज्ञानता से। तो इन्होंने, ये तो उनको फाइनल हो गया कि मनुष्य जीवन मिला इसलिए है कि मोक्ष होने, तो इसका यूज नहीं, कति व्यर्थ है ये। और फिर ये भी ज्ञान हो गया कि एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, आन उपासना ब्रह्मा विष्णु महेश, इन देवताओं की भक्ति से बात नहीं बने, ये फाइनल हो गया। तो उन्होंने केवल ओम नाम का जाप और हठ योग जैसे ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ था वो करने लग गए। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि ज्ञानी जो है ना वो मुझे पसंद है, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा छोड़ दी और ब्रह्म साधना करते हैं, उनको मैं अच्छा लगता हूं, उनका समझ में आ गया। तो अब कहता है कि ये उद्दार आत्मा, ज्ञानी आत्मा है तो नेक, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत मिला नहीं जो परम अक्षर ब्रह्म का ज्ञान करा दे, जिस कारण से ये सभी मेरे वाली घटिया गति में स्थित रहे। इसका अर्थ ये बनता है हरियो नोको न, वो तो अनुत्तम मन सर्वश्रेष्ठ गति, भगवान अपनी गति को अश्रेष्ठ कैसे कहेगा। हरियो कहन लग रहा, अब दिखाता हूं, देखिएगा सातवें, अब सातवें अध्याय का हम अठारवां पढ़ेंगे, गीता अध्याय नंबर, श्रीमद भगवद गीता अध्याय नंबर सात का और श्लोक नंबर हम 18 पढ़ेंगे, ये 18। उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम। ये कहता मेरे विचार में, मेरे मत में ये ज्ञानी आत्मा तू माने तो है, सर्वे सर्वे माने सारी, उदारा माने श्रेष्ठ, ये उदार आत्मा है, जितने जो ज्ञानी आत्मा है, ज्ञानी चौथे प्रकार के आस्तित सही युक्त आत्मा माम एवं अनुतमाम गतिम। ये क्या कह रहा है कि ये सभी अच्छी आत्मा है और ये ज्ञानी मेरे विचार में, और ये लेकिन मेरे वाली माम अनुतम गतिम, मेरे से मिलने वाली जो गति स्थिति यानी लाभ है, उस घटिया है वह घटिया, अनुतम अश्रेष्ठ है, उसमें ही आस्थित है, उसमें ये उसी में सीमित हैं, उसी पर आश्रित हैं। इन्होंने क्या किया, नकलियों ने, ये सभी उद्धार हैं परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है, ये मेरा मत है, क्योंकि वह युक्त आत्मा मंत मदत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम, अनुत्तम माने अति उत्तम बेड को गुड लिख रहे हैं बुद्धि भ्रष्ट, और गति माने गति स्वरूप मुझ में ही सतीत है, सतीत माने अच्छी प्रकार सतीत है। अब इसका अर्थी दासा बन गया है, उद्धारा माने उद्धार है, सर्वे माने ये सारी, एव माने ये, एते माने सब, ये ज्ञानी आत्मा, ये ज्ञानी आत्मा है तो सारी उद्धार की उद्धार, ये मेरा मत है, श्रेष्ठ है क्योंकि समर्पण है परमात्मा के ऊपर, लेकिन आस्तित से ही युक्त आत्मा माम एवं अनुतमाम गति, ये सभी भक्ति में लीन आत्माएं मेरे वाली घटिया गति में आश्रित हैं, स्थित हैं। अब इसने अपनी साधना घटिया क्यों बताया, जैसे दास ने बहुत बार बताया आपको, आज भी क्लियर किया इस सत्संग के दौरान, जैसे आपको बताया कि ऋषियों ने हठ योग तो ले लिया ब्रह्मा जी से, इसको आकाशवाणी हुई थी देवी भागवत के तीसरे स्कंद में, कभी पढ़ाएंगे आपको कंप्लीट, उसमें लिखा है, तो वो तो वहां से ले लिया, और वेद मिले बाद में उसमें ओम मंत्र, कोई मंत्र नहीं दूसरा, तो इन्होंने ओम मंत्र को पूर्ण परमात्मा मान, जैसे देवी भागवत में आपने पढ़ा, देवी भागवत के अंदर देवी खुद कह रही है ब्रह्म को, ये अक्षर ब्रह्म है, अक्षर अक्षर पुरुष, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में दो पुरुष हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष, और तीसरा परम अक्षर पुरुष वो है सर्वशक्तिमान। तो ये ब्रह्म को ही तो अक्षर पुरुष कह रही है, ब्रह्म को ये परमात्म कह रही है, ब्रह्म को ये परम अक्षर ब्रह्म कह रही है, और फिर कहते उसका ओम नाम है और ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे, तो इन सारे का इनकी अकल गामजारी थी, इनको किसी को ज्ञान नहीं था। तो यहां इसी प्रकार की ज्ञान इन ऋषियों को प्राप्त था, तो इन्होंने ओम नाम का जाप ले लिया, हठयोग ले लिया ब्रह्मा वाला, ये डले डोए न सबने। तो इससे गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन ये मेरा रूप तने जो देखा, यो मेरा वास्तविक रूप है, मेरी प्राप्ति यह है। लेकिन ये मेरा रूप ना वेदों वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी साधना से, मेरे रूप का कोई दर्शन नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, यानी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तो वेदों में वर्णित विधि से परमात्मा प्राप्ति नहीं है, इसलिए निराकार निराकार कह दिया। इन मिला को नहीं कहते, खोजत खोजत था किया अंत कहा बेचून। कबीर साहब कहते हैं सूक्ष्म वेद में, तत्व ज्ञान में, कि खोज खोज कर थक गया, आखिर में कह दिया निराकार है। और वो तो काल साकार है, सारे भगवान साकार है। तो इन ऋषियों ने परमात्मा की खोज में समर्पित हो गए। एक चुनक नाम का ऋषि था, इसी आधार से उसने अन्य देवताओं की पूजा नहीं की, ओम नाम का जाप हठ योग स्टार्ट कर दी। तो इससे इनको परमात्मा मिलानी, ये एटम बम बन जाते, सिद्धियां आ जाती गजब की। कई हजार वर्ष तक तप करता रहा, सूप के अस्थि पंजर सा बन गया, एक पूरी पृथ्वी का शासक मान धाता चक्रवर्ती राजा था। और उसमें राजा लोग क्या किया करते कि अपनी पूरे राज्य में दूसरे तीसरे चौथे वर्ष क्या करते थे कि ये देखने के लिए कि मेरी पराधीनता को किसी ने अस्वीकार तो नहीं कर दिया है, उसके लिए एक घोड़ा जो राजा का पर्सनल हॉर्स होता था उसके गले में एक पंपलेट लिख दिया जाता था कि जिसने राजा की पराधीनता अधीन स्वीकार ना हो अधीनता, तो वो घोड़े को पकड़ दे और युद्ध के लिए तैयार हो जा। उस पर लिख रखा था राजा के पास 72 सोनी सेना है, 72 करोड़ समझ लो मोटे शब्दों में। तो वो घोड़ा साथ में हजारों सैनिक पूरी पृथ्वी पर घूमे आए, जाते समय भी तुनक ऋषि की कुटिया के पास से गए, जब वापस आए तब भी वहीं से गुजरे। चुनक ऋषि इस ब्रह्म का पुजारी था, काल का। इसने कहा अब देखो काल क्या चाल है, पहले तो इसको एटम बम बनवाया, हॉट गजब की साधना करवा दी, परमाणु बम बनवा दिया, बना दिया भक्ति सिद्धि शक्ति का। उधर से उसके हाथ में रिमोट, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। संत का और राजा के खसन की के मतलब होया करे, वो अपना काम करे, वो अपनी भक्ति करे, तुझे कुछ कहें जब तक दूसरी बात छेड़े छाड़े, जब तक अपनी सिद्धि शादी भी दिखा। वे मतलब खस्या अगवे कहां गए थे सैनिकों, सैनिक बोले जी ऐसे ऐसे गए थे हम पूरी पृथ्वी घूमे, सारी कहानी बताई। तो ऋषि ने कहा कि तुम्हारे राजा में इतनी ताकत है, किसी ने घोड़ा नहीं पकड़ा? अक नहीं, किसकी मां ने दूध पिया? क्योंकि सैनिक भी अभिमानी राजा के अभिमानी ही हो जाते हैं, नौकर भी। किसकी मां ने दूध पिलाया है और फोड़ दे जाड़ उसकी, ऐसे कर दे वैसे कर दे, है किसी की हिम्मत? राजा के पास 72 सोनी सेना आया है। अब चुनक ऋषि ने सोचा ये तो घने अभिमानी हो गए, इन सेट कर दू। उसने कहा कि मैंने पकड़ लिया। चुनक ऋषि ने कहा कि मैंने युद्ध वट लिया तुम्हारे राजा का, अरबान दे घोड़ा यहां पर। सैनिक बोले अरे कंगाल, ओ कंगले, दाने खाने को नहीं तेरे पास, और युद्ध करेगा मानधाता चक्रवर्ती राजा के साथ, तेरी क्यों सात बोल दे रही है, तेरी क्यों सामत आई है, चुप करके अपनी माला फेर बैठ चुपचाप करके। तो ऋषि कहने लगे अभी देखी जाएगी, हमने युद्ध उठ लिया। अब उन्हें बांध दिया घोड़ा उसी कुटिया के, उसी वृक्ष का जिसका नीचे कुटिया थी उस ऋषि की। राजा को जाकर नमक मिर्च लगा के बता दिया जी आज एक व्यक्ति ने हिम्मत करी है आपके घोड़े को बांधने की, कल दूसरे का सिर उठेगा। निप द ईवल इन द विंड, बुराई को स्टार्ट में समाप्त कर देना चाहिए। राजा ने कहा ठीक है मंत्रियों, तो जाओ 72 सोनी सेना की 4 टुकड़ी बना दी 18-18 करोड़ की। उधर से उस कर्म ठोक ने ऋषि ने उस काल के पुजारी ने अपने जीवन में जो कमाया था उसके 4 डले बना लिए, 4 पुतली परमाणु बम बना दिए, 4 सिद्धि थे। वचन जैसी शक्ति किसी चीज में नहीं है। ये विज्ञान तो फेल है वचन के सामने। अब राजा की 18 करोड़ सेना आई, उसने एक पुतली परमाणु बम छोड़ दिया, 18 करोड़ को कत्लेआम कर दिया। समझ में नहीं आया उनका कहां से तीर आवे हैं। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेजी, ऋषि ने दूसरा परमाणु छोड़ दिया, यानी 72 करोड़ सेना की चारों टुकड़ी उस ऋषि ने नाश कर डाली, 72 करोड़ जीव मार दिए। अपने आत्माओं, यहां बताता है गीता ज्ञानदाता, कहता है इसके साथ के बनेगी फिर इस ऋषि के साथ। अब तक इसने टीटी पाक के और 72 करोड़ जीव मार दिए। देखो जीव हिंसा कोई किसी हथियार से कर दो, या अपने शराब से कर दो, या अपने किसी सिद्धि साधना से कर दो, वो तो पाप ही है। अब यू काल का कितना लंबा जाल है कि इसने तपस्या करी, उससे तो राजा बनेगा एक यू चुनक ऋषि, ओम नाम का जाप करा, ब्रह्मलोक में जावेगा, ब्रह्मलोक में जावेगा जब तक इसके पुण्य रहेंगे, वह चौधरी पाक क्या रहेगा न खूब ठाठ करेगा, क्योंकि इस परम अक्षर ब्रह्म न छोड़कर सतपुरुष कबीर साहब की भक्ति को छोड़कर बाकी जिसकी भी आप साधना करते हो आपके पाप और पुण्य दोनों भिन्न भिन्न लिखे जाते हैं और सारे ही आप न भोगने पड़ते हैं। पुण्य के लिए पहले महासुर्ग जाएगा, वहां अपने ओम नाम की कमाई ने नाश करेगा, फिर पृथ्वी पाओगा और राजा बनेगा। राजा बनकर चक्रवर्ती राजा भी बन सकता है चुनक ऋषि की आत्मा। फिर नरे पाप को मावेगा, कि ते शिकार खेल लगा, कि तो रुद्रमस्त आ रहेगा, कि ते सेना मरवा होगा युद्ध कर करके, पृथ्वी यही छोड़ जाएगा, रह जाएगी युद्ध के खाओगा। उसके बाद फिर 84 लाख योनियों में चक्कर मावेगा, यो कुत्ता बनेगा, और इस कुत्ता बनकर इसके शर्म में कीड़े पड़ेंगे। वो जितने 72 करोड़ सैनिक इसने मारे थे वह सारे इसको चुन चुन कर खाएंगे। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार है, यानी समर्पित है भगवान के लिए, लेकिन ये मेरे वाली घटिया साधना में ही लीन रहे, मेरी अनुतम गति में रहे, कि जन्म मृत्यु मेरी भी रहेगी और ये भी 84 लाख योनियों में चक्कर काटते रहेंगे, ब्रह्मलोक में जाओगे फिर पुनरावृत्ति में आवेंगे। अपने आत्माओं ये है तत्व ज्ञान। अब क्या बता सुख संवेद में, 72 अक्षौणी खा गया यो चुनक ऋषि सुवर एक, ये दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के वेख। कहते हैं 72 अक्षौणी अक्षय करी, 72 अक्षौणी का नाश कर दिया, 72 करोड़ सेना खा गया यो चुनक ऋषि सुवर एक। ऋषि जैसे एक मुनि, और फिर मुनिवर यानी मुनियों में श्रेष्ठ, और फिर मुनीश्वर यानी मुनि वर्ग तभी श्रेष्ठ, उनका भी मालिक उनसे भी तगड़ा, तो सब यानी तीसरी क्वालिटी का माना जाता था ऋषिश्वर। जैसे कि एक ईश्वर और तीसरा परमेश्वर, तो इसी प्रकार इनकी स्थिति होती है, ऋषि ऋषिवर ऋषियों में श्रेष्ठ, और फिर ऋषिश्वर ऋषि श्रेष्ठ ऋषियों से भी श्रेष्ठ, यानी सबसे बढ़िया ऋषि का यू कर्म। होय होय 72 अक्षौणी खा गया ये चुनक ऋषि सुवर एक, ये दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के वेखे। होय होय ये तुमने दिखे भगत, और ऋषि कहते हैं चलती फिरती मौत है, ये तोब के गोले थे, ये दे धारे मौत, जोरा माने मौत, ये चलती फिरती मौत, कोई थोड़ा सा बोल पड़ेगा तेरा नाश होगा, नाश से कर सको तुम भला कैसे कर सकते, क्योंकि तुम काल के पुजारी, यू भला कर ही नहीं सकता जीव का। तो यहां गीता ज्ञानदाता इसलिए कहता है कि मेरी भक्ति जो करते हैं ज्ञानी आत्मा, ये है तो नेक है, पर तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे वाली अनुत्तम गति में, घटिया गति में मेरे वाली साधना, इस स्थिति में मेरी गति माने जो ओम नाम से होने वाली जो गति है मोक्ष है, मेरे से प्राप्त होने वाले मोक्ष तक सीमित रहे। यू किसा मोक्ष, ब्रह्म लोक में रहे 1000 वर्ष, फिर आगे धक्के खान, ईसा मोक्ष है मेरा, गीता ज्ञान दाता के अपने आत्मा में देखना रहस्य इस गीता जी में। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में स्पष्ट कर दिया, बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ है। क्या बताया है कि बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा माम प्रपद्यते मेरी भक्ति करता है ब्रह्म तक की, ना तो नीचे की जय गणेश देवा इन पत्थर की पूजा मंडे रहते लगे रहते। कोई एकाध करता है ब्रह्म साधना और वो बता दी बात घटिया है मेरे वाली, फिर कहते हैं वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सु दुर्लभ है। ये बताने वाला कि वासुदेव का अर्थ क्या होता है, जिस परमात्मा का सबके ऊपर अधिपत्य हो वो सर्वशक्तिमान सर्वगतम ब्रह्म, उसको वासुदेव कहते हैं। वेद में वासुदेव परमेश्वर कबीर जी के लिए उपमात्मक लिया गया है, अरिनन वासुदेव लादे श्री कृष्ण के, कर श्री कृष्ण तो वासुदेव का बेटा था और वासुदेव एक व्यक्ति था जिसका नाम वेदों से ही उनके गुरुओं ने सिलेक्ट करके लिख दिया, श्री कृष्ण वासुदेव नहीं था। ये तो एक ब्रह्मांड में एक विभाग का मंत्री है, शतोगुण विभाग का, और परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा असंग ब्रह्मांड के स्वामी है, वो है वासुदेव और वही पूजा के योग्य है, वही मोक्षदायक है, वही पाप नाशक है और वो सबका मालिक है, सबका धारण पोषण करने वाला। कहते हैं ये बताने वाला संत बड़ी मुश्किल से मिलेगा अर्जुन कि वासुदेव ही सब कुछ है, उसकी भक्ति करो और की त्याग दो, वो पाप नाशक है, सबका पालक है, सृष्टि रचनहार है। कहते ये बताने वाला महात्मा तो सुदुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। और पुण्यात्मा आपको आसानी से मिला दिया दाता ने, धन आपके माता पिता जिससे जन्म हुआ। ये देखिएगा हम यही पढ़ रहे हैं गीता अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर हम 18 पढ़ लिया अनुत्तम का अति उत्तम करा क्या मूर्खा ने। अब 19 में क्या कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुनाम जन्मानाम अंते बहुत बहुत जन्मों के अंत के जन्म में कोई ज्ञानवान ज्ञानी आत्मा मुझे मेरी भक्ति करता है। वासुदेव है सर्वम इति स महात्मा सो दुर्लभ है। ये बताने वाला कि वासुदेव ही सब कुछ है, सर्वम वही मालिक है, वही सबका जनक है, सबका पालक है, पाप नाशक है, भक्ति योग्य है, पूर्ण मोक्षदायक है। ये बताने वाला साधु संत तो बड़ी मुश्किल तय मिलेगा। इनका अनुवाद देखिए, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, यानी चे लिखा भी उन्होंने अर्थात वासुदेव के सिवा अन्य कुछ है नहीं। बिल्कुल सही है, इन वासुदेव श्री कृष्ण मान रखा था ये उस पर कह रहे, इसका अर्थ ये सही है, सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको बचता हुआ महात्मा सुदुर्लभ है, कर दिया ना अज्ञान इन्होंने बकवाद कर दी सारी। इसका सीधा सा अर्थ है, देखो संस्कृत पढ़ेंगे हम, बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत बहुत के अंत के किसी जन्म में ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है। और वासुदेव सर्वमिति वासुदेव ही सब कुछ है, इति यह बताने वाला सह महात्मा सुदुर्लभ है, वो संत तो बड़ी मुश्किल तय मिलता है। एक समय परमात्मा मिले थे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, कबीर साहिब गांव छुड़ाने जिला जद्दर हरियाणा। उसके पश्चात उनको ये ज्ञान पर कंप्लीट दे ही दिया था, अपने से परिचित करा दिया था, सतलोक ले गए थे, वापस छोड़ा था। तो उस एक समय पंजाब का रहने वाला लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, वहां का एक 800-900 बीघे का जमींदार था सरदार जी, उसका नाम था राम राय। ये सिंह तो गुरु गोविंद सिंह के बाद लगाने लगे हैं, पहले तकरीबन मिलते जुलते हिंदुओं वाले नाम ही थे इनके। तो उसको एक दिन कभी गरीबदास जी की वाणी ब्रह्म वेदी सुन ली किसी भगत के द्वारा, जो गरीबदास जी का शिष्य था, उससे उसने पूरा एड्रेस लिया उस संत का। वो आकर्षित हो गया इस वाणी पर, किसी महापुरुष की वाणी और अब वर्तमान में जीवित है तो लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये वाणी के मनमज्ज हैं। सिख पंजाब के लोग बड़े आदर करते हैं पर संतों की वाणी का और संतों का। अब वो वहां से चल पड़ा एड्रेस लेकर छुडानी गांव का, 200 किलोमीटर पैदल आया, किधर रेल थोड़ी बहुत ट्रेन भी ना होगी जब तक, जैसे तैसे वो छुडानी पहुंचा। अब उसने केस सोच रखा था, ये लंबा प्रकरण बन जाएगा मैं बताता हूं आपको। तो जब गरीब दास जी से मिला, उन्होंने ज्ञान सुनिया, सारा ज्ञान सुनकर तो दाना दाना गिन दिया गरीबदास जी ने, तो वो कहने लगे महाराज ये ज्ञान तो आज तक किसी ने बताया नहीं हमारे को। परमात्मा बोले कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात तुलाहा भेद नहीं पाया काशी माई कबीरवा, कि आपके नानक जी को भी परमेश्वर मिले थे, उनको ज्ञान था लेकिन उस वाणी को समझ नहीं सकते। तू तो क्या कहा कि तत्व भेद कोई नाक है, उसका नाम झुमक झुमकरा भी था, क्योंकि गांव में दो दो नाम रख लिया करें गांव में, एक तो राम राय उर्फ झुमकरा, यानी वो गढ़ा डामाडोल सा दिमाग का आदमी था, एक बात ने कई कई बार पूछा करता, अविश्वास सा रहता था उसको, जिस कारण से गरीबदास जी ने उसको इसी नाम से पुकारा था झुमकरा, उर्फ नाम झुमकरा था, झुमकरा से ज्यादा जाना जाता आदमी जिसका शॉर्ट नाम हो गांव में वही ज्यादा प्रसिद्ध होता है। तो इसलिए अपने गरीबदास जी के ग्रंथ में एक अंग है झुमकरा, जो सरदार जी को समझाया था, क्या कहा था, तत्व भेद कोई नाक है रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झुमकरा, कोटो मद कोई नहीं रे झुमकरो, और बोम कोई गर्क सुनो राई झुमकरा, के तो पैसे ऊपर नाच हो रहा है, संत नहीं है, इनको तत्व भेद है ही नहीं, ना कोई जानता ना कह सकता। और कहते करोड़ संतों में कोई संत नहीं मिलेगा इस तत्व भेद का ज्ञाता, तत्व ज्ञान का ज्ञाता, कोई अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झुमक रहा अरबों में, ओए होए, अब पूरे विश्व की कितनी आबादी है, 5 अरब से ऊपर, और 5 अरब के अंदर एक ये दास है जो तत्व ज्ञान का ज्ञाता वर्तमान के अंदर है। तो गरीबदास जी कहते हैं कोटो मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, करोड़ संतों में नहीं पाओगे इस ज्ञान का ज्ञाता, और कंप्लीट कोर्स हो उसके पास, पूरे मंत्र हो गर्क माने सैचुरेटेड कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, देसी भाषा गर्क यानी कति कंप्लीट, जिसमें कोई कसर ना हो, ऐसा संत। कहते कोटो मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, करोड़ों में कोई नहीं है, अरबों में कोई गर्क सुनो रही झुमकरा। तो यहां गीता जी भी वही कहती है, बहु नाम जन्माना मनते ज्ञानवान माम पर्वते वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ, कि ये बताने वाला कि वासुदेव यानी सर्वशक्तिमान परमात्मा जिसका सबके ऊपर अधिपत्य है वो वासुदेव है, जैसे ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी ये सबके ऊपर सबके मालिक नहीं है, वासुदेव माने सबके ऊपर जिसका वास है, जो सबका मालिक है, ये केवल ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक विभाग के एक ब्रह्मांड में मालिक है, ये कुल के मालिक वासुदेव नहीं है। सर्वपुरुष यानी ज्योति निरंजन कालिन का पिता ब्रह्म, ये केवल 21 ब्रह्मांड का मालिक है, ये कुल का मालिक नहीं, ये वासुदेव नहीं है। अक्षर पुरुष केवल 7 सिंह ब्रह्मांड का मालिक है, ये कुल का मालिक नहीं है, ये वासुदेव नहीं है। परम अक्षर ब्रह्म ये ओवरऑल कंट्रोलर है, सब का मालिक है, ये वास्तव में वासुदेव है, वो कबीर परमात्मा। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ले गए थे सतलोक सचखंड वापस छोड़ा था, तब उन्होंने बताया नानक साहिब जी को भी परमात्मा लेकर गए थे, उन्होंने वापस छोड़ा, और भी दादू साहिब जी को भी, बहुत से महापुरुषों को जिनके शुभ नाम दास बार बार आपको दोहराता है। तो क्या बताया है कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, ये सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। वो कौन कबीर? काशी जात दुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। ये है वो परम अक्षर ब्रह्म जिसके विषय में गीता ज्ञान दाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन सर्वधर्मान परिताज माम एकम शरण व्रज अहम तवा सर्व पापे भयमोक्षामि मासुच, कि मेरे 70 के ओम नाम के जाप की और ये 500 यज्ञ जो करता है तू, ये मेरे 70 की जो ओम नाम की, क्योंकि पूर्ण परमात्मा के पाने का 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत, ओम ब्रह्म का, सर्व पुरुष का, तत् और सत्य सांकेतिक है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 23 में तत् सांकेतिक है, तत् और ओम मिलकर ये 2 अक्षर का मंत्र बनता है, इसको सत्यनाम कहा गया है, और सत ये सार नाम है, ये परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। तो यहां बताया है कि मेरे 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का ये अर्थ है कि सभी मेरे 70 की जो धार्मिक साधनाएं हैं, अनुष्ठान तने किए हैं ओम नाम के जाप की, मुझे दे दे वह भक्ति, फिर मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। क्योंकि हम ओम नाम के जाप की कमाई ब्रह्म लोक में खर्च कर देते थे, हम कंगाल के कंगाल होकर गधे बनकर घूमते रहते थे, ये हम इसके मजदूर बने रहे। अब हम इसको ओम नाम का जाप दे देंगे, ये हमें छोड़ देगा, फिर हम सतलोक में चले जाएंगे अपने परमात्मा के पास। तो ये भी कहता है सर्वधर्मान परितज माम, मेरे स्तर की सब पूजा है, मुझे मत छोड़ दे। एकम शरणम व्रज, एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, सर्वशक्तिमान की शरण में जा, तब मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। फिर जब मेरा हमारा हम इससे कर्ज मुक्त ही हो गए, फिर इसका हमारा लेना देना क्या रहा, ये क्या मांगे हमारे ऊपर। तो इस प्रकार हम सतलोक जाएंगे और गीता ज्ञान दाता इस उस परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर साहब की शरण में जाने को कह रहा है कि जा उसकी शरण में जाने से ही तू सर्वभाव से उसकी पर उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, और मेरी शरण में रहेगा तो अर्जुन जन्म मृत्यु तेरी भी होगी मेरी भी होगी, और मेरे पुजारी का क्या हाल होगा, सुनक ऋषि की कथा तेरे को सुना दी। तो पुण्यात्माओं आपका सौभाग्य है, आपको ये अनमोल वचन अनमोल ज्ञान सुनने जोगा बनाया, पहले तो भगवान ने आपको विद्वान बनाया, शिक्षित किया, और दास को इसका जानकार बनाया, आज आपके रूबरू ऐसा बना दूंगा जैसे पहली का कहता है, अगर वेद गीता और पुराणों को आप याद रखोगे। बोलो सतगुरुदेव।
महाराज जी, क्या श्राद्ध पिंडोदक क्रिया करनी चाहिए? प्रमाण सहित बताइए।
आज आपको थोड़ा सा विवरण देंगे कि ये श्राद्ध क्यों निकाले जा रहे हैं। पुण्यात्माओं, जब तक हमें सतगुरु नहीं मिलते तब तक हम अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही करके जाते रहे, भले ही हम आन उपासनाएं करके छोटी मोटी सिद्धियां प्राप्त कर लेते थे, जिस कारण से हम आम व्यक्ति से ज्यादा कुछ उत्तम नजर आते हैं। जो ये ऋषि महर्षि सिद्ध संत कहलागे, इन्होंने काल साधना की और उससे कुछ सिद्धियां प्राप्त कर ली, और जिस कारण से हमने इनको साधु संत और महात्मा पहुंचे हुए महापुरुष मान लिया, सिद्धि प्राप्त प्राणी ऐसा होता है जैसे आप देखते हो वर्षा के समय में बिलों से चींटियां निकलती हैं, और उन चींटियों में कुछ पंखों वाली चींटियां भी होती हैं, और वो आकाश में उड़ जाती हैं, तो अन्य चींटियों को ऐसा लगता है कि ये चींटी जो है ये तो भाई भगवान से मिल गई, ये तो आकाश में उड़ जाती है। और फिर क्या होता है, जब या तो किसी दीपक के ऊपर जल के मर जाती है वो आकाश में उड़ने वाली चींटियां, या किसी बल्लभ के ट्यूब के चारों ओर चक्कर काट काट के वो पंख रहित होकर जमीन पर गिर जाती है और अंत में वो चींटी की चींटी ही हो जाती है। ठीक इसी प्रकार ये ऋषि महर्षि जो काल साधना करके हठ योग करके जंतर मंत्र करके इन्होंने सिद्धियां प्राप्त की और फिर ये सिद्धियां समाप्त हो जाती हैं कुछ एक इनके उल्टे सुलटे कार्य ये कर देते हैं, किसी को श्राप दे देते हैं, किसी को दुआ देते हैं, किसी को बददुआ दे करके फिर ये लास्ट में जीव के जीव ही रह जाते हैं। तो सत्संग सुनने से हमें ज्ञान होता है कि कौन सी साधना करनी चाहिए कौन सी ना करनी चाहिए। आज आपको थोड़ा सा विवरण देंगे कि ये श्राद्ध क्यों निकाले जा रहे हैं। हमारे जो धर्मगुरु थे ये अज्ञानी थे एक नंबर के, इनको ना अपने सिलेबस का पता था, अपने टेक्स्ट की बुक्स का पता नहीं। पुराण, श्रीमद् भगवद गीता और वेद ये हमारे आध्यात्मिक सिलेबस है और हमारे धर्मगुरु संस्कृत जानते थे और ये संस्कृत बोला करते थे। गीता का और वेदों का मंत्र तो वही बोल देते थे, अनुवाद अपने हिसाब से गलत करते थे, जिस कारण से हमारे अंदर भ्रम बना रहा कि ये बड़े विद्वान हैं, संस्कृत भाषा जानते हैं, इन्होंने सदग्रंथों को ठीक ठीक जाना होगा। इन्होंने अपना भट्ठा बैठाया और साथ में हमारे पूर्वज भूत बनवा के छोड़ दिए। एक मोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। एक समय एक रुचि ऋषि थी, उस ब्राह्मण ने वेदों को समझा और उसके आधार से अपना जीवन प्रारंभ किया भक्ति मार्ग का। उसकी उम्र 40 वर्ष की हो गई थी, उसने विवाह नहीं किया, ब्रह्मचारी पद में रहता हुआ वेदों अनुसार अपनी साधना कर रहा था जैसा उसको ज्ञान था। 40 वर्ष की आयु जब हुई उसके पूर्वज चार ब्राह्मण और दिखाई दे जो मर चुके थे, मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, पिताजी, दादाजी और परदादाजी और फिर चौथा दादाजी। वो चारों उसको आकाश में दिखाई दी, आवाज लगाई कि बेटा रुचि आपने विवाह क्यों नहीं किया और विवाह करके हमारे श्राद्ध निकालता, हम बहुत दुखी हो रहे हैं, आपने यू कार्य क्यों नहीं किया। तो रुचि ऋषि कहने लगा कि हे पितर्महो, वेद के अंदर इस श्राद्ध कर्म को, इस कर्म कांड को मूर्खों की साधना बताया है, फिर आप मुझे क्यों इस कर्म में लगा रहे हो। इस बात को उसके पूर्वज ऋषि, उसके पिता, दादा, परदादा, चौथा दादा वो भी मान रहे हैं कि हाँ बेटा वेदों में ऐसा ही है जैसा आप बोल रहे हो, वेद में ऐसा ही लिखा है। जब वेद में, वेद है सिद्धांत भगवान का, एक विधान परमात्मा का, और ये जो उन ऋषि महर्षियों ने कहां से ग्रहण किया वो कि श्राद्ध निकालो, ये किसी पुराण से ग्रहण किया और पुराण ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, जैसा कि आपको पहले भी सत्संग में बताया। वेद और श्रीमद् भगवत गीता, वेद वाला ज्ञान ही श्रीमद् भगवत गीता के अंदर है और सूक्ष्म वेद में भी ऐसा ही है जो परमात्मा ज्ञान देते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा मार्कंडेय पुराण से ये प्रकरण रूबरू करते हैं जिसमें रुचि ऋषि और उसके पूर्वजों का जो भूत बनकर धक्के खा रहे हैं और अपने पुत्र को भी उसी विवश कर रहे हैं कि तू भी बन भूत गलत साधना करके। ये देखिएगा मार्कंडेय पुराण, मार्कंडेय पुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी संक्षिप्त, गीता प्रेस के रूप से प्रकाशित है। और ये कहां से छपा है अब इसके हम आपको ले चलते हैं 242-43 पे। ये देखिएगा 242 पृष्ठ पे मार्कंडेय पुराण संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, रोच्चे मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मन पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ति में रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा ये देखो, ये भूत दिख गया इसने, ये देखो ये भूत दिखाई देंगे चारों, ये पिताजी दादाजी और फिर दादा का पिताजी दादा का परदादाजी, ये चारों भूत बन रहे ऋषि जी। अब ये क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं देखिएगा। पितर बोले, बेटा विहा स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं पितरों ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह स्वाहा के उच्चारण से देवताओं को, श्रद्धा के शब्द से पितरों को तथा अन्नदान बलि वैष्णदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा हम ऐसा मानते हैं कि ग्रस्त आश्रम को स्वीकार ना करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाना पड़ेगा और मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी क्लेश ही भोगने पड़ेंगे। अब रुचि ऋषि कहता, पितृगण परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है और तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। अब हम ज्यादा ना पढ़कर आपको अपने काम की बात पढ़ावेंगे। पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित ही है। तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष मार्ग है। रुचि ने पूछा, पितामहो वेद में कर्म मार्ग को किसको, जैसे ने भी बताया था कि इन्होंने बताया था इन पितरों ने कि गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं पितरों ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह स्वाहा के उच्चारण से देवताओं को श्रद्धा के शब्द से पितरों को अन्नदान बलि वैष्णदेव आदि से भूत और आदि प्राणियों एवं अतिथियों का उनको भाग समर्पित करता है। बेटा हम ऐसा मानते हैं, गृहस्थ आश्रम को स्वीकार ना करके तुमने जीवन में क्लेश पर क्लेश भोगने पड़े। भावार्थ है कि जो तुम ये श्राद्ध श्रुद्ध ना निकालता, ये निकाल। अच्छा यू क्या कह रहा है फिर? ये कह रहे हैं कि जो तू लग रहा है ना, यू तो है मोक्ष मार्ग। अब के पूर्वज कह रहे हैं कि जो तू लग रहा है वो मोक्ष मार्ग है और हम बताओ वो नरक मार्ग में आ जा, तू मोक्ष मार्ग न छोड़ दे। ये देवता कह रहे हैं कि पितर देखो। पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो तो मोक्ष मार्ग है। अरे हम बतावेंगे कौन सा मार्ग है। अब रुचि ने पूछा, पितामहो वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है। ये श्राद्ध श्रुद्ध निकालना, भूतों की पूजा करना, तेरहवीं करना, ये सारा कर्म मार्ग है, कर्म कांड है। वेद में कर्म मार्ग को अविद्या मूर्खों का मार्ग कहा गया है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग पर लगाते हैं? पितृ बोले, ये सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनक भी मिथ्या नहीं। फिर क्या रह गया? अब इनकी अकल देखो, इनकी चोर ले गए इनकी अकल को, इन पितरों की, श्राद्ध निकलवाने वालों की। अब वो लड़का ठीक श्राद्ध ना कर रहा था अपनी, वेदों के आधार से। और ये भी मानते हैं कि तू आप जो साधना करे तो मोक्ष मार्ग है, और यू क्या मारा ले माजा तुझ कुएं में गिर पित्र बने। और ये कह रहा है कि रुचिर कह रहा है कि ये तो दो वेद में इसको मूर्खों की पूजा बताया है, अविद्या क्या है, और खुद भी मानते हैं कहा ये बात तो सही है, इसमें कोई मिथ्या नहीं। फिर टट्टू रह गया, थोड़ा शर रह गया, क्या रह गया जो वेद में रिजेक्ट कर दिया कि साधना नहीं करनी चाहिए, पितृ पूजा भूत पूजा। अब कहने का भाव यह है कि इन्होंने इस रुचि को डरा धमका के अटबट सुना के, अब जिसके पहले वाले चार दादे पड़दादे पिताजी दिखाई दे जा, ये तो खरबुद्धिमान व्यक्ति था, थोड़ा बहुत इसने तो अपना तर्क दे भी दिया, और आपको कोई चार दादे दिख जाए तो जब समर्पण कर दो, बोलो जी के को हो गई कर दूंगा। तो हमने इन दादों के चक्कर में ही पाना नहीं। कई भक्त कहते हैं कि भाई जैसे अपने पूर्वज दिखाई दे जा, पिताजी दिखाई दे जा, और वो कहे कि मेरे सरहद निकलवा दो, तो कैसे मना किया जा सकता है। पुण्यात्माओं तर्क के साथ विवेक से चलना पड़ेगा हमने। वो तो कुएं में गिर गए, अरे वो कह काजा बेटा तू भी गिर जा कुएं में, बुद्धिमान तो पड़े नहीं। बुद्धिमान का कर्तव्य बनता है कुएं में गिरे हुए व्यक्ति को भी निकालने की चेष्टा करे, कोई ऐसा साधन खोजे उसमें रस्सा फांस दे, तब उसने कहा आप भी पकड़ दो और बाहर आ जाओ, आपकी भी जान बचा, मुझे क्यों मरवा रहे हो पिताजी। तो बुद्धिमता इसमें होती है। अब कुएं में गिरे हुए व्यक्ति को निकालना चाहिए, ना कि भावुकता में छलांग लगा दे दोनों मर गए फिरता है। तो इन गलत साधना करके जो भूत योनि पितृ योनि प्राप्त कर चुके हैं, उस साधना को हम नहीं करेंगे नहीं तो हम भी उस कुएं में गिर जाएंगे। अपने आत्मा श्रीमद् भगवत गीता में क्या बताया है, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं को प्राप्त होते हैं, और जो पितरों की पूजा करते पितरों को प्राप्त होंगे पितर बन जाएंगे, और भूतों की पूजा करने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, वो भूतों वाले ग्रुप में चले जाएंगे भूत बनकर। और गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति करोगे मुझे प्राप्त होगे। देखिएगा ये श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 को आपके रूबरू करते हैं। यह है अध्याय नंबर 9 श्रीमद् भगवत गीता और 25वां श्लोक। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, पितरों को प्राप्त होंगे पितर बन के जाएंगे वे, और भूतों को प्राप्त होने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, मेरा पूजने वाले मुझको प्राप्त होता है। अब वो इस पवित्र श्रीमद् भगवत गीता ने भी स्पष्ट कर दिया, भूत पूजोगे तो भूत बनोगे, पितर पूजोगे पितर बन जाओगे, और देवताओं की पूजा करोगे देवताओं के लोक में जाकर उनके अनुचर बनोगे। और गीता ज्ञानदाता कहता मेरी पूजा करोगे मुझे प्राप्त होगे, अंडरस्टूड है। अब सूक्ष्म वेद में कहा है कि राम रमय सो राम है, देव रमय सो देव, और भूत रमय सो भूत बने, समझ देख सुर भेव। अब आपको एक छोटी सी कथा सुनाता ये दास, जो हमारे सदग्रंथ हैं उनके अनुसार हम साधना करेंगे तो हम सफल होंगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में कहा कि अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है, अर्थात यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए कौन सी ना करनी चाहिए उसके लिए सदग्रंथ यानी शास्त्र ही प्रमाण है, किसी अन्य व्यक्ति की लोक वेद पर विश्वास ना करना। अब आपको सत्संग में पहले बताया था कि सदग्रंथ कौन से हैं जिनमें वर्णित साधना हम करें वो शास्त्र अनुकूल है, पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जो वेदों का निष्कर्ष है। और सुख संवेद जो परमात्मा ने सुन अपने मुख कमल से आकर यथार्थ ज्ञान दिया है। इसके अतिरिक्त जो पुराण है वो परमात्मा का आदेश संविधान नहीं है, वो ब्रह्मा जी का ज्ञान है। और ब्रह्मा जी के साथ साथ फिर उन्होंने प्रत्येक ऋषि ने अपना कुछ अनुभव मिला करके अलग अलग पुराण बांट दिए, शिव पुराण, विष्णु पुराण, जो देवी पुराण, मार्कंडेय पुराण। जैसे मार्कंडेय ऋषि जी ने ब्रह्मा जी से प्राप्त ज्ञान को अपने हिसाब से सेट करके वेदों से मिला करके बनाया, तो जो वेदों से मिलता है वो तो वेद ज्ञान है, और जहां मार्कंडेय ऋषि ने अपने तुक्के मारे हैं वो पुराणों का ज्ञान है, ब्रह्मा जी का ज्ञान है, वो गॉड गिवन नहीं है। जो परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है वो संविधान है, उसके अतिरिक्त किसी ब्रह्मा जी का या किसी ऋषि का दिया हुआ विधान है अध्यात्म मार्ग का, तो उसका अपना है, एक अधिकारी का आदेश है, मालिक का आदेश नहीं है। जैसे एक समय एक दरोगा जी का मित्र था, एक ग्रामीण किसान, और उसने अपने मित्र दरोगा से कहा कि मेरा एक पड़ोसी है, साथ वाले मकान में रहता है एक व्यक्ति, और वो मुझे बहुत दुखी करता है, कोई समाधान बताओ। तो दरोगा जी ने कहा कि मार उसका लठ, माफ देख लूंगा। अब उस व्यक्ति ने अपने मित्र दरोगा जी यानी एक अधिकारी की आज्ञा का पालन करके अपने पड़ोस वाले उस व्यक्ति के साथ झगड़ा ठान लिया और उसका लठ मार दिया, लठ मारने से उसकी मृत्यु होगी। अब उस व्यक्ति ने एक अधिकारी की आज्ञा का पालन करके राजा का विधान भंग कर दिया। राजा का विधान है कि कोई किसी की हत्या करेगा तो उसको सजाए मौत होगी। वही अधिकारी वो SHO अपने उस मित्र को अरेस्ट करना पड़ा उसने, और हवालात में डालना पड़ा, और फिर उसको सजाए मौत होगी। तो पुण्यात्माओं, जो वेद गीता और सूक्ष्म वेद ये है विधान परमात्मा का, इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति विशेष या कोई ऋषि विशेष या कोई देव विशेष अपने सत्र का कोई ज्ञान आपको देता है, आदेश देता है कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो, अगर वो वेदों में नहीं मिलता है तो वो परमात्मा का विधान खंड होगा उसकी आज्ञा पालन करने से। अब आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं, इन पितरों इन ये कहां से लाए सराधने का ये सिस्टम। हमने अब आपको रोना आया करेगा, हमारे पूर्वजों की दुर्गति करवा दी इन लोगों ने, अंधों ने। एक टीचर का फर्ज बना है अपने सिलेबस ने ढंग से जाने और फिर विद्यार्थियों को पढ़ावे। अब आपको दिखाते हैं श्री विष्णु पुराण। अपने आत्मों यही पुराणों की अगर माने तो पुराणों के अंदर भी बहुत सा ऐसा विवरण दे रखा है, जो जैसे दास ने बताया था कि जैसे हमारे सदग्रंथ हैं ये एक वन है, और वन के अंदर बहुत सी अच्छी जड़ी बूटियां होती हैं, और जानकार व्यक्ति उन अच्छी अच्छी जो आवश्यक है उन जड़ियों को निकालकर एक औषधि बना लेता है। उस वन के अंदर, जंगल के अंदर ऐसी भी जड़ी बूटियां होती हैं जो हानिकारक भी होती हैं, तो जिसको ज्ञान नहीं वो हानिकारक जड़ी बूटियों को मिलाकर अगर बना देता है जुगाड़ कोई जड़ी बूटी, तो वो दवाई बनाता है तो हानि करती है। तो इन्होंने वो जड़ी बूटियां सेलेक्ट कर ली जो हमारे लिए हानिकारक थी। अब हम लेंगे वो जड़ी बूटियां जो हमारे लिए लाभदायक हैं, जिस जो वास्तविक औषधि बनती है जिससे। तो इसी ये विष्णु पुराण है, देखिएगा ये है श्री विष्णु पुराण सचित्र हिंदी अनुवाद सहित और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक कौन है ये भी दिखा देते हैं आपको। इसके अनुवादक हैं श्री मुनिलाल गुप्त अरे गीता प्रेस गुरुकुल से प्रकाशित है, इसके 213 पृष्ठ पर थोड़ी सी झलक दिखाते हैं। समझदार को संकेत पर्याप्त होता है। ये तृतीय अंश और अध्याय नंबर 15 चढ़ा 16 के आगे शुरू हो जाता है, हम 15 पढ़ेंगे। हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्व देव गण, पितृगण, पितामह और कुटुंब जन सभी संतुष्ट रहते हैं। जो श्राद्ध करते हैं उनसे देवगण, पितृगण, पितामह, कुटुंबीजन सभी संतुष्ट रहते हैं। आगे क्या कहा कि हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी एक सहस ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों के सम्मुख श्राद्ध खाने के लिए आए हुए 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो, तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। अब इसे क्या स्पष्ट हुआ, वही श्राद्धों की महिमा बताने वाला औरव ऋषि बोल रहे हैं। औरव वो क्या बता रहा है कि श्राद्ध निकालने वाला पितरों को और पितृगण, पितामह, कुटुंबीजन और देवताओं को खुश करता है। फिर इसके साथ साथ शेर स्पष्ट कर दिया है कि श्राद्ध कर रहे हो, श्राद्ध का अर्थ होता है एक धार्मिक अनुष्ठान, तो उसमें यह बताया कि उस धार्मिक अनुष्ठान में यदि 1000 ब्राह्मण आ रहे हो, श्राद्ध जीवने वाले, उनके सामने एक योगी आ जा उनके साथ में। अब योगी का क्या अर्थ है, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों से विचलित ना होकर हटकर एक तत्व, परमात्म तत्व ज्ञान के ऊपर आश्रित हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तू भगत बनेगा, योगी बनेगा। तो अब यही भी बताया है कि योगी वो होता है जो पूर्ण परमात्मा के ज्ञान से परिचित हो, अटल ज्ञान रखता हो, सत साधना कर रहा हो, उसको भोजन कराने से कहते हैं उन पितरों का भी उद्धार हो जा, 1000 ब्राह्मणा का उद्धार हो जा जो पेट भरते फिर रहे हैं जिनको ज्ञान कति नहीं, और यजमान का भी उद्धार हो। तो पुणात्माओं, दास ने आपको सबसे पहले योगी बनाया है, और यहां पर जो साधना होती है, दसवें दिन श्राद्ध होने लग रहे, यहां पर दसवें दिन समागम होते हैं, और जो भी दान पुण्य आप करते हो यह सब योगी खाते हैं, और इनके खाने से तो आपके पितरों का भी उद्धार होगा जो यहां दान कर रहे हैं। ये तो पुराण भी बता रही है और परमात्मा भी यही बता रहे हैं कि भक्ति बीज होवे जो हंसा, तारु तास के को त्रिवंशा। अब देखिएगा, यह है विष्णु पुराण, हम पढ़ रहे थे अभी आपको, और 213 पृष्ठ पे तृतीय अंश, और ये अध्याय 15 है, 16 यहां से शुरू होता है, इससे पहले 15 में है ये। हे राजन, औरव ऋषि ब्राह्मण कह रहा है कि हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्व देवगण, पितृगण, पितामह और कुटुंबीजन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी 1000 ब्राह्मण हो, सहस्रमान 1000, और ब्राह्मणों के 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो, तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। एक साध्य सब सदह सब साध्य सब जावे, माली सिते मूल को फिर फले फूले ए गाय। योगी वो नहीं है जो पेट का पानी लागे दिखा दे, ऊपर न पैर कर ले नीचे न सर, वो योगी नहीं है। वो तो एक प्राकृतिक चिकित्सक है वो व्यक्ति, वो संत नहीं है। योग का अर्थ होता है परमात्मा से मिलने का, योग करने का तरीका। योगी माने भक्त साधक। तो अब आपको क्या सिद्ध हुआ कि हमारे सदग्रंथ वेद है, वेद अनुसार साधना करने से हमें हमारी शास्त्र अनुकूल साधना बनती है, और वेद और गीता दोनों एक ही हैं, और परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया वो आपको सुबह सुना ही दिया था। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, अपने लला के बाल उतरवावे देके चीना लग जइया, एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। फिर कच्चा पाका भोजन बना के माता धोकने गईया, और उस माता ऊपर कुत्ता मुत्ता ओ क्यों ना मर गईया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। जीवित बाप गे लठम लठा, जीवित बाप गे लठम लठा, और मुरे मुए गंग पुचैया, जब आवे आसुज का महीना फिर कौआ बाप बनैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। और उन्हीं से प्राप्त ज्ञान को गरीबदास साहब जी कहते हैं कि प्रेत छला पर जा विराज्य पितरों पिंड भराई, और बहुत श्राद्ध खान को आए फिर काग भय कलमाई, नरसे तीतु पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये छप्पन भोग कहा मन बोरे कि ककुरड़ी चरने जाई। फिर क्या बताते हैं, जय सतगुर की संगत करते ये सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। यदि तुम सतगुरु की शरण में आ जाते ये सारे फंड छूट जाते, ना अपश्राद्ध निकालने, ना पितर बनना, ना भूत बनना, और सतलोक चले जाते। एक जीवित उदाहरण देता हूं आपको। मेरे पूज्य गुरुदेव जी इसी हरियाणा स्टेट से भिवानी डिस्ट्रिक्ट में एक दादरी के पास बड़ा पैतावास गांव है, वहां के रहने वाले थे। उनका जन्म पवित्र ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन उनको ज्ञान हो गया था कि जिस आधार से ये ब्राह्मण ब्राह्मण कहलाते हैं, ये ब्राह्मण नहीं है। ये तो एक परंपरा पड़ेगी, जैसे कोई वैद्य था और बहुत सुप्रसिद्ध वैद्य था, नब्ज पकड़ते ही रोग बता देता था और बढ़िया औषधि देकर स्वस्थ कर देता था। तो उस वैद्य के वंशजों को आने वाले समय में वैद्य कहने लग गए सारे, कृपाराम वैद्य, बलवान सिंह वैद्य, फलाना वैद्य, और वो वैद्य है केवल सरनेम बन गया उनका, वो वैद्य नहीं है। उस वैद्य के वंशज होने के कारण वैद्य नाम से प्रसिद्ध हो गए वह, और जानते नहीं पेट के दर्द की दवाई फिर खाक वैद्य है वो। इसी प्रकार जो ब्राह्मण है वर्तमान के, जिनको हम ब्राह्मण कहने लाएंगे ब्राह्मण, तो उस कुल में हमारे पूज्य गुरुदेव जी का जन्म हुआ। और उनको जब ज्ञान हुआ, जो पता चला कि ये तो केवल ब्राह्मण है, पंडित नहीं है, पंडित सोए जो पिंड की जाने। मेरे दादा गुरु जी थे वो दिल्ली के अंदर छावला गांव के जाट थे, किसान। और वो हमारे जो दादा गुरु जी के जो गुरु जी थे, जो जिनके वो संपर्क में आए, उन्होंने उनको काशी विद्यापीठ में पढ़ा दिया उस किसान के लड़के को, और फिर वो चार विषय के आचार्य बन गए। उनको पंडित चिदानंद नाम से जाना जाता रहा। आज भी उनका खरखोदा के पास में जिला सोनीपत हरियाणा में एक गोपालपुर छोटा सा गांव है, उसमें उनका आश्रम है हमारे दादा गुरु जी का, उस पर बोर्ड लगा हुआ है पंडित चिदानंद आश्रम। वो जाट होकर पंडित को आए, और हमारे गुरुदेव जी ब्राह्मण थे, बोले नहीं हम ब्राह्मण नहीं, हम संत हैं। तो कहने का भाव यह है कि मेरे पूज्य गुरुदेव जी जब 15-16 वर्ष की आयु के थे, खेतों में पशु चरा रहे थे। पहले यही काम करते थे, गौएं चराते थे अपने अपने, इनके जमीन भी थी, खेती भी करते थे। और हमारे जो दादा गुरु जी थे उनके संपर्क में आ गए, इनको प्रेरणा हुई, इन्होंने सोचा कि यदि मैं घर से निकलूंगा वैसे तो पीछे पीछे घरवाले भाग लेंगे, ये फेर लाओगे पकड़ गए। उन्होंने ऐसी सूझबूझ की, पहले वन बहुत होते थे, जंगल होते थे बड़े बड़े, इन्होंने क्या किया, एक दिन दो कपड़े ले गए अपने, दो ड्रेस, एक पैर गए एक और ले गए, और शाम के समय जब पशुओं को लेकर चलने का समय हुआ, अपने साथी दूसरे ग्वालों से कहा कि आप चलो मैं आ रहा हूं, एक बार फ्रेश होया हूं, जंगल में घुस गए और वो अपने पशु लेकर घर न आ गए। उन्होंने क्या किया, जंगल में जाके दिन में वो देख आए थे सारा साजबाज, एक पशु खा रखा था किसी इंसेक्ट पशु ने, किसी शेर ने या भेड़िए ने, कोई बकरा बुकरा खा रखा था, उसकी अस्थि पड़ी थी, उनके पास उनके ऊपर अपने कपड़े डाल दिए जो पहन के गया था, और दूसरे पहन करके वो सीधे चले गए जहां मेरे गुरुजी थे, उनके गुरुजी थे। अब रात्रि का समय हो गया, उस समय कोई ऐसा टॉर्च तार्च भी ना होया करती गांव में, लगभग 100 वर्ष 125 वर्ष पहले की बात है। कुछ देर इंतजार की, भाई वो उनका नाम था हरद्वारी बचपन का, तो घरवालों ने पूछा और दूसरे साथियों जो उनके साथ गए थे ग्वाले, भाई हरद्वारी नहीं आया। उन्होंने कहा कि वो आता ही होगा, वो फ्रेश होने चला गया था थोड़ा सा अंदर। काफी देर इंतजार करके घरवालों ने चिंता बन गई, भाई कोई इंसेक्ट पशु रहते हैं यहां पर जंगल में और बालक को कहीं आनी ना पहुंचा दी हो। 10-15 व्यक्ति चले साथ में ग्वालों को लेकर के, जिनने देखा था इधर गया था अंधेरे में, उसमें ऐसी टॉर्च टार्च भी ना थी, एक दीपक सा जला रखा था, लालटेन दे रखी थी, थोड़ा थोड़ा टिमटिमाता सा प्रकाश था। ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते अंदर गए, देखा तो वहां कपड़े पड़े, अस्थि पड़ी, एकदम अंधे हो गए। कहने लगे भाई बच्चा तो खा लिया, ओहो तो ये पड़ा भाई, फटाफट उसको उठाया कपड़ों में बांधा, लाकर थी बनाकर सुबेरे सुबेरे फूंक दिया। और फिर होगी उसकी 13वीं शुरू, अस्थि ठाई फिर गंगा में डाल के आए, फिर 13वीं करी, महीना करा, छमाही करी, वर्षी करी, और फिर हो गए वो श्राद्ध शुरू। वो जा रहे अपना कल्याण कराने के लिए। जब उनका सतलोक गमन का समय हुआ, मेरे पूज्य गुरुदेव जी मुख्य तौर पर पंजाब में रहा करते थे। पंजाब में एक तलवंडी भाई नाम का छोटा सा कस्बा है फिरोजपुर जिले में, और एक उनका आश्रम था मोगा में, तो तलवंडी में भी आश्रम था, अधिकतर वो तलवंडी रहा करते थे, वहां के सेवादार ज्यादा थे। तो तलवंडी भाई वो रहा करते थे, दास को दीक्षा देने का आदेश वो दे चुके थे 1994 में। 1996 में वो अपने गांव में आए इस पैंतावास दादरी के पास। हमें पता चला कि गुरुजी यहां आए हुए हरियाणा में, उनके साथ हमारे ही शिष्य उनके बच्चे दो सेवा में रहा करते थे, उनका संदेशा पहुंचा गुरुजी आ चुके हैं। तो दास भी चला गया, उसमें गांव गांव में सत्संग किया करते थे। जब हम वहां पहुंचे प्रणाम किया गुरुदेव को, उसमें सारा गांव देखने आया कि वो व्यक्ति तो जीव है जिसने हमारा मान रहे थे, सारा गांव देखने आया। वो गए थे लगभग 100 वर्ष के बाद, जाते ही बता दिया कि ये मेरे चाचा का घर था, ये हमारा घर था, हम इतने भाई इतनी बहन। तब उनको यकीन हुआ सचमुच तो वही हरद्वारी है, सारी पिंडी बता दी। तो जब दास वहां पहुंचा तो एक 92 वर्ष की 92 ईयर ओल्ड उनकी भाभी बैठी थी। ऐसे बात चलती रही चलती रही। मैंने उनसे पूछा कि जब हमारे गुरुजी घर त्यागकर चले गए थे तो आपने पीछे से कैसा महसूस किया, यहां नहीं थे, आपने मृत मान रखा था। तो उसने कहा भाई मैं आई ना, जब मुझे पता चला था कि इनका एक भाई निसंतान मर गया, बे औलादा मर गया, ऊत नपूत कहा कर देसी भाषा में, और इनके हिस्से की जमीन थी, तीन चार एकड़, चार पांच एकड़ जमीन इनके हिस्से में आती थी। उसको मेरे पति और दूसरा मेरे पति का भाई, ये तीन चार भाई थे, वो प्रयोग किया करते थे। और जब घर में कोई ऊख चूक हो जाती, खेती ना होती, पशु मर जाते या कोई बालक बीमार हो जाते, तो हम पूछने जाया करते थे अपने पुरोहित पे, और वो पतरा वतरा दिखाया करते, तो वो कहा करते कि आपका एक बेऔलादा मर रहा है, निसंतान मरा हुआ है हरद्वारी, और वो सिद्ध है, तुमने वो हानि कर रहा है, वो प्रेत प्रेत बना हुआ है, पितर बना हुआ है, वो प्रेत बाधा तुम्हें दुखी कर रही है। उसके लिए फिर जैसा भी वो जंतर मंत्र बताते हम सारा कराया करते, श्राद्ध भी निकाला करते थे। तो फिर मैंने उनसे कहा, माता जी गीता जी में लिखा है 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कि भूत पूजनीय भूत बनेंगे और पितर पूजनीय पितर बनेंगे, देवताओं के पुजारी देवताओं के प्राप्त होंगे, मेरी भक्ति करने वाला मुझे प्राप्त होगा। तो ये तो गलत साधन आपके सामने देख लो, ये तो जनता का कल्याण करने लग रहे और आप इसका कल्याण के लिए ठगे जा रहे थे। बोले भाई बात तो सच्ची है। मैं बोला जी अब तो त्याग दो इन बकवादों को, इन श्राद्धों को। ने बोली ना भाई, इन्हों को कर छोड़ दिया तो पुरानी लाग है, वहां बाढ़ में जाए पुरानी लाग है। अरे इतना प्रत्यक्ष देख रहे हो आप, फिर भी नहीं मान रहे, तेरा गजब हो। तो पुण्यात्माओं सौभाग्य आपका, ये परिवर्तन होगा यू सच्चाई के आधार से। पहले तो हम डरा रखे थे नकलिया ने, नो नहीं करोगे तो न्यू हो जाएगा, फलान हो जाएगा, खाक हो जाएगा, मालिक सिर पर बैठे, समर्थ का शरण गहो रंग होरी हो, वही कदे न हो काज राम रंग होरी हो, समर्थ का शरण आओ। फिर कैसे हो जाए, एक भगत बता रहा था, वो कह रहा था जी मैं अपनी बहन के यहां चला गया, उनके वहां वर्षा होगी, मारा हुई नहीं, किसान था वो, और मैं अपने उनका संदेश आया कि यहां वर्षा होगी है, जमीन ज्यादा है, आप आइयो अपने बैल ले आओ, हमारी मदद करो। मैं अपने बैल ले गया खेती संवारने के लिए, बीज बुआने के लिए, मेरी सेवा लगा दी दूसरे खेत में, वहां मैं ले गया, जानता था मैं खेतों को सारे, कई बार जा रहा था अपनी बहन के यहां, तो वहां एक जोड़ी थी उनके खेत के आसपास, उस तालाब था छोटा सा, छोटी थोड़ा पानी था, और उसमें एक मंडी ही बना रखी थी किसी पीर प्यार की। मैंने दो पैर में जाकर देखा, पानी पिलाने गया पशुओं को बैलों को, तो वहां एक दड़ी गुड़ रखा, बेली गुड़ की, मैं वह बेली ठा लाया, फोड़ के कुछ तो आप खाई और कुछ बैलों को डाल दी, उन्हें खा ली। तो मैं आके घर सो गया तो रात ने एक 3-1 फुट का व्यक्ति, दाढ़ी सी वाला, मुसलमान टाइप दिखाई दिया। नो बोला तूने मेरी बेली खा ली और बैलों को खिला दी, और दूर खड़ा नहीं, इतनी दूर मेरे तो 50 फुट दूर, नो कह तू तगड़े की शरण में था ना, तन्ने मारू और तेरे दोनों बैलों को मारना था मैंने, तू तगड़े की शरण में है यानी समर्थ की शरण में है, मैं तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सका, मैंने सारे अपनी कोशिश कर ली। तो मैं सुबह उठा, मेरा पसीने आ रहे, डर गया मैं, फिर उसने देख कर अकल सकल सी उसकी, मैंने अपनी बहन से पूछा कि मैंने ऐसे ऐसे एक बेली रखी थी गुड़, आप खा लिया, कुछ बैलों को खिला दिया, और मुझे ऐसे ऐसे कितनी उम्र साइज का एक व्यक्ति दिखा मुसलमान जैसा, यू के है। तो उसकी बहन बोली रे भाई तू बच क्यों कर गया, उसने तो गढ़े चेट कर रखे हैं, जब उसका किसी ने इतना भी सामान उठा लिया ने उसको मारे और उसके पशुओं में इतनी हानि कर दिया, था हाकार मचा देता, तू बचा क्यों करे। फिर बोला मुझे और दृढ़ विश्वास हो गया, अकबच घर में वो तो हाथ जोड़ के गया, फिर मेरे गुरु जी का गए, ने बोला तू तगड़े की शरण में है, अर्जा शरण मना होता तुझे मारता और तेरे बैलों को खत्म करता। तो पुण्यात्मा समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, वाई कदे न हो ऐ काज राम रंग होरी हो।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं।
नमस्कार सर।
सत साहिब जी।
क्या शुभ नाम है जी आपका?
मेरा नाम अनिल प्रसाद सिंह अर्थात भक्त अनिल दास है।
कहाँ से आए हैं सर?
मैं कपूरथला कैंट पंजाब से आया हूँ।
सर क्या काम करते हैं आप?
मैं केंद्रीय विद्यालय कपूरथला कैंट में वर्तमान में वाइस प्रिंसिपल ग्रेड में पीजीटी फिजिक्स हूँ और मेरी इस पीजीटी फिजिक्स पद पे 20 साल की जॉब है। इस बीच में मैंने नवंबर 2003 से मई 2005 तक जवाहर नवोदय विद्यालय ढलाई त्रिपुरा राज्य में डेपुटेशन पे प्रिंसिपल भी रहा और वर्तमान में मैं पुनः केंद्रीय विद्यालय में वाइस प्रिंसिपल ग्रेड में पीजीटी फिजिक्स पद पे कार्यरत हूँ।
सर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे?
संत रामपाल जी महाराज के शरण में मैं 27 मार्च 2004 को आया था और उसके पहले 98 से 2004 तक मैं संत आसाराम जी का शिष्य था और उन्होंने जो दीक्षा दी थी तो पूरे पंडाल में माइक पे 5-7 मंत्र बोलते थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, हरिओम हरिओम तत्सत, ओम ऐम नमः, ऐसे गायत्री मंत्र भी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, ऐसे जो पूरा मंत्र है ऐसे और 5-7 मंत्र बोल देते थे और वो कहते थे कि इनमें से आपको जो मंत्र अच्छा लगता है, जो आपके इष्ट देव है वो मंत्र चुन लीजिए। तो उसके पहले मुझे मैं शिवजी को मानता था कि वही सर्वशक्तिमान भगवान है, मुझे कुछ ज्ञान था ही नहीं, तो मैंने ओम नमः शिवाय मंत्र चुन लिया था और मुझे ओम नमः शिवाय मंत्र सेलेक्ट कर लिया तो मेरा वही मंत्र हो गया। और बाद में उसके बाद एक मंत्र वो और देते थे सोहम, और वो जाप करने की विधि वो बताते थे कि सांस बाहर जाए तो सो और सांस अंदर आवे तो अहम बोलना है। और इसका वो लाभ ये बताते थे कि इस मंत्र के जाप करने से परमात्मा प्राप्ति जल्दी हो जाती है, शीघ्रता से हो जाती है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता था कि जब ओम नमः शिवाय मंत्र जाप रहे हैं, शिवजी हमारे इष्ट हैं, तो फिर दूसरे मंत्र से शीघ्रता से क्यों आ जाती है। तो चूंकि बुद्धि नहीं थी तो मैं इस पे साइलेंट था, लेकिन ऐसे जो भक्ति बताते थे वो करता था। साथ में वो मौन मंदिर बना रखे हैं अपने आश्रमों में। तो मैं उस समय मैं राजस्थान में था, कांकरोली जिला में, तो वहां पे एक आश्रम था उनका। तो उस आश्रम में जाके मैं मौन भी धारण करता 24 घंटे का, एक सप्ताह का ऐसे। और उसके बाद वो 2481 का व्रत भी बताते थे और जितने भी 4 रात्रि जागरण होते हैं, जन्माष्टमी, कृष्णाष्टमी, रामनवमी और इस तरह से, और जो 4 बताते थे वो सारा करता था। साथ में जो गणेश पूजा आ जाता था तो वो भी करते थे, नवरात्रि का पाठ भी करते थे और जो कन्याएं होती थी छोटी छोटी अविवाहित तो उनकी पूजा भी वो बताते थे, वो सारे करता था। इन सभी क्रियाओं को उसके बाद वो जितने भी उनके आश्रम से पुस्तक निकलती थी, जितनी भी कैसेट्स निकलती थी, वो सबको मैं ध्यान से सुनता था, सारे पुस्तकों को मैं ध्यान से पढ़ता था ताकि कोई भी नई चीज आ जाए तो मैं उनको क्रियान्वित करूं। वो बताते थे चतुर्मास में जमीन पे नहीं सोना, पलंग पे नहीं सोना चाहिए, जमीन पे सोना चाहिए, तो मैं जमीन पे सोता था। काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए चतुर्मास में, तो मैंने काले कपड़े छोड़ दी। फिर वो तिल और वो आमलेस के पानी से नहाना चाहिए, मेरे बाल्टी भी खराब हो गए, मैं वो भी नहाया। लेकिन इन सभी क्रियाओं को करते करते मुझे कोई भी आध्यात्मिक लाभ तो बहुत दूर की कौड़ी थी, मुझे कोई शारीरिक में जो शरीर में कष्ट और शुरू हो गया और लाभ कुछ भी नहीं हुआ। जैसे मेरे घुटने में दर्द शुरू हो गए, मुझे सर्वाइकल हो गया, मुझे डिस्क की प्रॉब्लम हो गई और सबसे बड़ी बात जो मेरे पेट काफी खराब रहता था, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती थी। मैं उनका इतना भक्ति भी करता था सुबह शाम और सारे मंत्र जाप करना, सब कुछ करना, और मैं 1,000-1,500 रुपये महीने की आयुर्वेदिक दवाइयां खाता था और फिर भी मुझे कोई राहत नहीं होती थी। और चूंकि ज्ञान नहीं था तो मुझे उनकी भक्ति से कोई शिकायत भी नहीं थी। और इसके अलावा उन्होंने कहा एक बार कि जोग वशिष्ठ महारामायण पढ़ना चाहिए, तो मैंने वो पुस्तक ला करके पूरी पढ़ ली। अटबट क्या लिखा था मुझे उसकी कुछ समझ में तो आता नहीं था, लेकिन चूंकि गुरु ने कहा था मैं पढ़ता ही रहता था। उसमें एक चीज मैंने जरूर पढ़ा था कि भगवान राम के जो, वो मुझे याद है, भगवान राम के जो गुरु थे वशिष्ठ जी, वो जब नगरों में निकलते थे तो गांव के जो प्रजा लोग होते थे वो उनको गालियां निकालते थे, उनसे बदसलूकियां करते थे। तो मुझे इतना लगता है कि जो सच्चे संत होते हैं, जो भी होते हैं, तो समाज के लोग उनसे घृणा करते ही हैं। उनसे जुड़े हुए मेरे में एक ये तड़प जाग गई उनसे जुड़ने के बाद कि जैसे वो कहते थे कि संत अगर डांट दें कुछ गुस्सा करें तो भी उनसे वो समझना चाहिए हमारा सौभाग्य है। तो ऐसे भक्त के कुछ लक्षण तो मेरे में जरूर आ गए थे। वो कहते थे दूसरे संतों की वो सत्संग नहीं सुनना, लेकिन मेरे अंदर वो ऐसी तीव्र जिज्ञासा थी कि हम जहां भी रहते थे आसपास में किसी भी संत का सत्संग होता था मैं सुनता ही था। वहां से उनकी सीडी लाना, कैसेटे लाना, सारी बुक्स लाना कि कोई भी अच्छी चीज मिल जाए, अच्छी क्रिया मिल जाए तो मैं उसको करना चाहता था। आसाराम जी बहुत सारे कैसेटे निकालते थे, बहुत भयावह, जैसे मौत की मौत, उसको मैं रात को 10-11 बजे कैसेट को अंधेरे एक कमरे में लगा के सुनता रहता था ताकि मुझे परमात्मा मिल जाए। और दूसरे संतों के भी सत्संग में भी जाता रहता था तो मैं उनसे, संत बताते थे कि अनन्य भक्ति से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो फिर मैं सोचता था कि हमें मंत्र शिवजी का दिया गया है, ओम नमः शिवाय, शिवजी हमारे इष्ट हैं, लेकिन हमें रामनवमी भी मनाने को कहा जाता है, हमें विजयादशमी भी मनाने को कहा जाता है, हमें दुर्गा की पूजा भी करने को कहा जाता है, हमें हनुमान जयंती भी मनवाया जाता है, माने सारी देवी देवताओं की, और श्राद्ध भी निकलवाया जाता है। तो फिर ये अनन्य भक्ति कैसे हुआ? तो फिर हमें परमात्मा मिलेंगे नहीं। तो मैं किसी संत से पूछ दिया, एक हिसार में बहुत सारे संत आया करते थे, तो मुझे वो समझाया करते थे कि जैसे आप शिवजी के को अपना इष्ट मानते हो, तो अगर भगवान राम के मंदिर में जाओ तो आप ये मानो कि ये राम नहीं है, ये शिव हैं, तो आपकी भक्ति अनन्य हो गई। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया ही नहीं, मैं संतुष्टि मुझे नहीं हुई कि राम की मूर्ति और शिव कैसे हो सकते हैं। तो फिर ये मुझे संतुष्टि नहीं होती। फिर ये सत्संग में जो सभी संतों के पास मैं जाता था तो वो बताते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव हैं, और परमात्मा के भी जिक्र करते थे कि परमात्मा हमारे रक्षक हैं, सब सृष्टि रचनहार हैं, परमात्मा कोई और हैं। तो मैं उनसे सवाल करता था कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश अगर देव की संज्ञा में आते हैं तो परमात्मा कौन है? तो ये संत हमें बताते थे कि फिर तो आपको उपनिषद का ज्ञान देना पड़ेगा। तो ऐसे यहां से कहीं भी, एक तरफ ये सुनाते थे कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी अमर हैं, दूसरी तरफ इन्हीं की कथाओं में सुनाते थे कि ब्रह्मा जी की आयु 100 बरस है। तो मेरी समझ में नहीं आता था कि जब ये अमर हैं तो फिर इनकी आयु 100 बरस ही है, तो 100 बरस तो फिर ये अमर कैसे हुए? फिर मैं, चूंकि मैं शास्त्रों को भी पढ़ता था, मैंने शिव पुराण और ये विष्णु पुराण, ब्रह्मा पुराण ये सब पढ़ा, तो शिव पुराण में शुरू में पढ़ता था तो उसमें ये मैंने पढ़ा, मुझे समझ में आता था बंदीश्वर सतगुरु रामपाल जी के शरण में आने से पहले कि ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति शिव से हुई, शिव पुराण पढ़ने में हमने ये समझ में आया। और जो विष्णु पुराण पढ़ा मैंने तो उसमें विष्णु जी से शिव जी और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तो हिसार में एक दीन दयालु जी जो संत हैं उनका भी सत्संग यहाँ खूब हुआ करता था, मैं वहां भी सुनने जाता था। उनसे मैंने पूछा कि शिव पुराण में ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति शिव से लिखी गई है और विष्णु पुराण में विष्णु से शिव जी और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति लिखी हुई, ये कैसे संभव है? तो बहुत गुस्से हो गए कि तुम कुछ नहीं जानते हो और तुम नास्तिक हो और तुम ऐसे सवाल करते हो। और फिर कहा, बाद में मैं चुपचाप रहा क्योंकि हमें बताया गया था कि संत अगर डांटते भी तो उसमें भगत का कल्याण समझना चाहिए। तो इस भाव से मैं चुपचाप ऐसे रह गया कि मैं तो अज्ञानी हूं। तो फिर बाद में उन्होंने कहा कि ऐसा है कि किसी कल्प में शिव रूप में परमात्मा आते हैं और सभी को उत्पत्ति करते हैं और ऐसे ऐसे होता है, लेकिन ये मुझे संतुष्टि यहां से नहीं मिली थी। इस बंदीश्वर सतगुरु रामपाल जी के शरण में आने से पहले हमें कोई भी आध्यात्मिक संतुष्टि नहीं मिली, शारीरिक कष्ट दूर नहीं हुए। और मैं चूंकि पीजीटी फिजिक्स था और प्लस वन प्लस टू को मैं फिजिक्स पढ़ाता था, और सभी लोग जानते हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, फिजिक्स टीचर बहुत ट्यूशन कमाते हैं, माने 1-2 लाख रुपए महीने का वो ट्यूशन से कमा लेते हैं सैलरी के अलावा, 50,000 तो बहुत मामूली रकम होता है उनके लिए। तो उन दिनों मुझे लगता था कि मैं ज्यादा से ज्यादा ट्यूशन कमाऊं, मुझे ध्यान उधर ही रहता था। लेकिन जब मैं बंदीश्वर सतगुरु रामचपाल के शरण में आया तो मुझे उधर से, माया से बिल्कुल मन हट गया।
संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप संतासाराम जी महाराज से जुड़े हुए थे, और भी आप बता रहे थे कि भी बहुत से संतों के पास गया, अपने प्रश्नों का हल ढूंढा, तो इस सिलसिले में आप और किन किन संतों से मिले?
इस सिलसिले में मैं, एक नाम तो मुझे याद नहीं, आर समाज के एक से जुड़े हुए एक संत थे, तो उनका मैंने एक सत्संग सुना था कि राम जो जपते हैं तो सृष्टि, जब प्रलय होता है तो राम में दो अक्षर हैं रा और म, नष्ट हो जाता है ये, लेकिन जो ओम अक्षर है वो अविनाशी है और ओम की साधना करने से उसका मोक्ष होता है, वो जन्म मृत्यु रहित होता है। तो इस बीच में अब देशानंद जी का भी सत्संग हिसार में बार बार हुआ करता था। उन दिनों में 2004 से पहले तक उस तक में हिसार में मेरी पोस्टिंग थी, 2003 के जनवरी फरवरी या मार्च में हमने, चूंकि उन दिनों जब मैं उनसे जुड़ा हुआ था तो सभी संतों का सत्संग भी सुनता था और टीवी चैनल पे जितने भी संतों के सत्संग आते थे जितना मुझे समय मिलता था मैं खूब सुनता रहता था। और किसी दिन छुट्टी होती थी तो लाइव सत्संग जो संतों के आते थे वो मैं बैठ जाता था। एक दिन शाम को मैं चैनल को छेड़ते छेड़ते मैं ऐसे चैनल लग गया जो बंदी छोर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का, उस पर सत्संग आ रहा था। तो ये गीता जी को खोल के वहां से अनुवाद बता रहे थे और उसके पहले मैंने जो सत्संग जितने भी सुने थे वो कहानी टाइप के सुनाते थे, कोई पुस्तक का आधार नहीं था। तो पहले तो मेरी ये प्रतिक्रिया रही कि ये कैसे संत हैं, ये तो पुस्तक देख के सुना रहे हैं। चूंकि मैं टीचर था मैं बिना पुस्तक पढ़े देखे ही फिजिक्स को क्लास में पढ़ाता हूँ, प्लस वन प्लस टू का पढ़ाता था। तो फिर भी चूंकि मुझे सत्संग सुनने की आदत थी तो मैं ध्यान से सुनने लगा। तो बंदी छोर सतगुरु रामपाल जी उस समय एक श्लोक गीता जी के एक श्लोक समझा सुना रहे थे, पढ़ के बता रहे थे गीता जी को, गोरखपुर से जो प्रकाशित है, और उसमें बता रहे थे, वो पढ़ के सुना रहे थे कि रजगुण तमगुण और सतगुण प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं, अर्थात उनको बंधन में रखते हैं, मोक्ष मुक्त नहीं होने देते। फिर उन्होंने दैवी भागवत पुराण निकाल के उन्होंने पेज नंबर 123 पे उन्होंने बताया कि वो रजगुण तमगुण सतगुण, ये जो रजगुण ब्रह्मा जी हैं और तमोगुण शिव जी हैं और सतगुण विष्णु जी हैं। और बाद में मार्कंडेय पुराण के 123 नंबर पृष्ठ पे भी उन्होंने बताया कि रजोगुण प्रधान ब्रह्मा जी हैं, सतोगुण प्रधान विष्णु जी हैं और तमोगुण प्रधान शिव जी हैं। ये तीन ही देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और तीन ही गुण हैं, रजगुण तमगुण और सतगुण। तो उन्होंने इस तरह से वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि रजगुण तमगुण सतगुण ये कोड वर्ड है और इसको तत्वदर्शी संत ही विश्लेषण कर सकता है। और गीता जी में ये जो रजगुण तमगुण सतगुण का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो मुझे बहुत उत्सुकता हुई, मैं टीचर भी था, मैं फिजिक्स का टीचर हूं, कि आगे और क्या बताएंगे, ये ज्ञान हमने पहले कभी सुना नहीं था। तो उसके बाद उन्होंने फिर समझाया, इस बात को एक्सप्लेन किया कि ये कैसे जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं, जैसे मनुष्य जीवन में भक्ति किया या नहीं किया मृत्यु हो गई, ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों गुणों की पूजा की तो मृत्यु होगी। तो चूंकि ये शास्त्रानुकूल भक्ति नहीं है तो इनकी मृत्यु होने के बाद अगर मान लो मेरे पिछले पुण्य ज्यादा हैं तो फिर मनुष्य जीवन मिल जाएगा, फिर भक्ति करेंगे या नहीं करेंगे, फिर कुत्ते बन गए तो कुत्ते के शरीर मिल जाएंगे, फिर गधे की, फिर बिल्ली की, फिर 84 लाख जोनियों में जाएंगे, अर्थात एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा जाती रहेगी और ये पूर्ण मोक्ष को प्राप्त नहीं होगी। और उन्होंने एक श्लोक और बताया था कि ब्रह्मा भी, उसमें जो श्लोक गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र 12 से 15 तक में विश्लेषण कर रहे थे कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, मनुष्यों में नीच मूर्ख लोग, दुष्कर्म करने वाले लोग मुझको भी नहीं बचते। तो उनको माया के, माया मतलब त्रिगुण माया होती है, रजगुण तमगुण सदगुण। तो गुरु जी ने विश्लेषण कर रहे थे कि जो ये तीनों देव की भक्ति करते हैं वो उस गीता ज्ञानदाता भगवान की भी भक्ति नहीं करते हैं।
सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए?
एक दिन मैं टीवी चैनल को छेड़ते छेड़ते एक चैनल लग गया, उसमें संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ रहा था और उसमें गीता जी के एक श्लोक को, जो गीता प्रेस गोरखपुर से जो प्रकाशित थी, उसको पढ़ के प्रोजेक्टर पे वो टीवी पे दिखाया जा रहा था और उसमें ये श्लोक था, रजगुण तमगुण सतगुण प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। ये हिंदी अनुवाद गुरु जी बता रहे थे और इसका संस्कृत भी उन्होंने पढ़ के एज इट इज सुनाया था। तो फिर उन्होंने ये गुण का विश्लेषण देवी भागवत पुराण और मार्कंडेय पुराण से किया था। मार्कंडेय पुराण के 123 नंबर पेज पे उन्होंने बताया कि रजोगुण प्रधान ब्रह्मा जी, सतोगुण प्रधान विष्णु जी और तमोगुण प्रधान शिव जी हैं, और ये तीन ही देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और तीन ही गुण हैं, रजगुण तमगुण और सतगुण। और फिर इसी का दूसरा प्रमाण उन्होंने देवी भागवत पुराण के पेज नंबर 123, उसका भी पेज नंबर 123 जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित था, उस पे विष्णु जी अपनी महिमा, माता की, दुर्गा माता की महिमा गा रहे थे और वो बता रहे थे कि मैं, अर्थात विष्णु जी, ब्रह्मा और शंकर तुम्हारी कृपा से विराजमान हैं और हमारा तो आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्या हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। गुरु जी ने बताया था कि प्रकृति शब्द याद रखना, ये गीता जी समझने में काम आएगी। और आगे फिर उन्होंने उसी 123 नंबर के दूसरी साइड में जो भगवान शंकर बोल रहे हैं कि हे माता, यदि ब्रह्मा जी को उत्पन्न करने वाले आप हो और विष्णु जी को भी आपने ही उत्पन्न किया है, तो क्या तमोगुणी लीला करने वाला मैं शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मैं भी तुम्हारा ही संतान हुआ। तो यहां से भी क्लियर किया गुरु जी ने कि ये शिव जी स्वयं अपने आप को तमोगुणी बता रहे हैं, तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी, ब्रह्मा जी रजोगुणी और विष्णु जी सतोगुणी है। तो उस श्लोक को समझाने के लिए इतने सारे प्रमाण के बाद फिर गुरु जी वापस उस श्लोक पे आए कि रजगुण तमगुण सतगुण प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, प्रकृति वहां दुर्गा को कहा गया था, इसका मतलब दुर्गा से उत्पन्न ब्रह्मा विष्णु महेश और जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं, मतलब हम सभी जीवात्मा को मुक्त नहीं होने देते। उन्होंने गुरु जी ने समझाया था कि जैसे मनुष्य जीवन समाप्त हो जाएगा, हमारे पुण्य नहीं है तो हम पशु बन जाएंगे, पक्षी बन जाएंगे, किसी और जोनि में चले जाएंगे, ज्यादा पुण्य है तो देवता बन जाएंगे, अर्थात एक शरीर से हमें दूसरा शरीर मिलता रहेगा लेकिन हम पूर्ण मोक्ष को प्राप्त नहीं होंगे। तो इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा हमारे गीता जी में व्यर्थ है, ऐसा गुरु जी समझा रहे थे। ये श्लोक सुनके, चूंकि उन दिनों में आसाराम जी से दीक्षित था और मेरा मंत्र ओम नमः शिवाय था और शिव जी मेरे इष्ट थे, तो पहली बार जो ये सुना, और उसके पहले दीनदयालु जी ने बताया था, क्योंकि मैं उसके पहले मैं सभी संतों के सत्संग में जाया करता था, तो दीनदयालु जी का सत्संग जो हिसार में हुआ करता था कई बार मैंने सुने थे, तो उन्होंने कहा था कि साधकों को गीता का, भगवत गीता का, श्रीमद भगवत गीता का पाठ करना चाहिए कम से कम एक अध्याय रोज। तो मैं कई वर्षों से वो श्रीमद भगवत गीता का पाठ करता था हिंदी हिंदी, और उसमें ये सारे श्लोक पढ़ते थे, लेकिन गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, तो बिना गुरु के हमें कुछ वो समझ में नहीं आता था। मैं ये सोचता था कि ये जो गालियां ऐसी लिखी गई है साधकों के लिए गीता जी में, जैसे मूढ़, मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले, आसुर स्वभाव को प्राप्त पानी, मुझको भी नहीं बचते हैं और इन देवी देवताओं को बचते रहते हैं, तो मुझे लगता था कि मैं तो मंत्र जप रहा हूं तो ये मेरे लिए नहीं है, ये तो उन लोगों के लिए है जो भगवान की भक्ति नहीं करते। लेकिन बाद में पता चला कि जो इन तीनों देवताओं की भक्ति करते, बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से पता चला कि ये उनके लिए बात थी। तो मैं चूंकि उसके पहले शिवजी का भक्त था, शिवजी मेरे इष्टदेव थे और ओम नमः शिवाय मंत्र जापता था, और जो गुरुजी ने ये समझाया कि इन देवताओं की पूजा करने वाले को मोक्ष नहीं होते और इनको राक्षस स्वभाव को कहा गया है, तो मुझे लगा कि मेरा सिर फट जाएगा। मुझे लगा कि ये गीता जी हैं, और गीता जी पर मुझे पूरा विश्वास था क्योंकि मैं बिहार स्टेट से बिलोंग करता हूं, और मेरे गांव में जो कोई मरता था व्यक्ति, तो मरते हुए व्यक्ति को मैं ये सुनता था, बचपन में भी देखा था कि उनको गीता जी का कोई श्लोक पढ़ के सुना दो ऐसा कि उससे उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो उस दृष्टि से भी, और इधर कई वर्षों से मैं गीता जी का पाठ करता था, तो इससे गीता जी के श्लोक पे और गीता जी पे जो ग्रंथ हैं उस पे मुझे पूरा विश्वास था। तो गुरु जी ने जो भी समझाया और वहां श्लोक उन्होंने दिखाया, मुझे पूरा विश्वास हो गया कि ये बात बिल्कुल सच्ची है। लेकिन मेरी बुद्धि इतनी काम नहीं करी कि इस संत जी का एड्रेस ढूंढना चाहिए, इनके पास जाना चाहिए, इनका कल्याण करवाना चाहिए। लेकिन उस भक्ति की जो पहले कर रहा था मैं छोड़ भी नहीं पा रहा था, इनको ढूंढने की मेरी बुद्धि काम नहीं की कि इनको ढूंढना चाहिए था। इस बीच में मेरी जो आर्य समाज के एक संत थे वहां हिसार में सत्संग कर रहे थे, तो मैं उनके सत्संग में भी चला गया। वो योगा ज्यादा सिखाते थे, आसन प्राणायाम आदि, कि शरीर स्वस्थ रहेगा, और थोड़ा बहुत प्रवचन करते थे, ध्यान करवाते थे ऐसे अटबट बोल करके। और एक बात जो उन्होंने कही थी जो मेरे दिमाग को फिर वहां झंकृत कर दिया था कि जब प्रलय होता है तो जो राम जपते हैं तो राम में दो अक्षर है रा और म, वो विलीन हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसके साधक भी विनाश को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन ओम एक अक्षर है और इसका खंड नहीं होता, और ये प्रलय काल में भी जो इसकी भक्ति करते हैं उसका नाश नहीं होता। तो मेरे दिमाग में और हो गया कि अब ये ओम को बता रहे हैं, राम गलत बता रहे हैं, और वो संत जी तो जो थे बंदीछोड़ रामपाल जी महाराज, उनसे मैं जुड़ा नहीं था, वो ब्रह्मा विष्णु महेश जी की सेवा भी व्यर्थ बता रहे हैं लेकिन वो प्रमाणित है। तो इस बीच में वो और मेरे सिर दर्द हो गए, मैं और घबराहट में हो गया, मैं क्या करूं ना करूं, किससे पूछूं। तो इसी बीच में अवधेशानंद जी का भी वहां सत्संग हिसार में बार बार वहां प्रोग्राम लिया जाता है, मैं उनका सत्संग में भी गया, वो भागवत पे कथा करते थे, और उन दिनों में गया था तो श्रीराम कथा पहली बार कह रहे थे, वो बीच बीच में बता रहे थे। तो मैं उनसे जाके ये सवाल पूछना चाहा कि कोई तो कहता है कि राम राम जपो, और कोई तो कहता है कि भाई राम में दो अक्षर हैं, वो खंड हो जाएगा सृष्टि में और प्रलय हो जाएगा, तो एक अक्षर मंत्र जो अविनाशी है उसका जाप करो, तो आप स्वामी जी आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैं दंग रह गया। उनका जो अवधेशानंद जी का रिएक्शन, एक संत कहलाते हैं वो समाज में, आज तो मुझे तत्व ज्ञान हो गया वो संत कहलाने लायक है नहीं, लेकिन उन दिनों तो मैं उन्हें संत मान रहा था, स्वामी जी मान रहा था। वो बहुत जोर से मेरे ऊपर गुस्सा किए और कहे तुम नास्तिक हो, तुम आर समाजी हो, तुम इस तरह के सवाल करते हो। तो मैं बिल्कुल स्टन रह गया कि मैंने क्या गलती करी, मैं तो मूर्ख हुई, अज्ञानी हुई। उन्होंने ये भी कहा था कि तुम अज्ञानी हो, मूर्ख हो, भ्रमित हो। तो मैंने मेरे मन में सोचा मैं तो भ्रमित हूं तभी तो संतों के पास आ रहा हूं। और मैं चुपचाप बैठा रहा और आसाराम जी की बताई वो बात मुझे याद आई कि संत अगर गुस्सा भी करें, डांट भी लगाएं, थप्पड़ भी लगाएं, तो अपना कल्याण समझना चाहिए और उनसे बकवाद नहीं करनी चाहिए, प्रतिवाद नहीं करनी चाहिए। तो वो बात मुझे याद आ गई। मैं चुपचाप ऐसे बैठा रहा हाथ जोड़ करके काफी देर तक, और उनका टीवी पत्रकार लोग इंटरव्यू ले रहे थे। तो थोड़ी देर के बाद उनको शायद लगा कि इसमें भगत के कुछ लक्षण हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे क्या सवाल थे, आप ऊपर वाले कमरे में आना, मैं वहां बताऊंगा। तो मैं थोड़ी देर के बाद ऊपर वाले कमरे में गया। तो फिर ऊपर वाले कमरे में जाकर उन्होंने फिर ये बताया कि ऐसे तो 21 ब्रह्मा 21 विष्णु हैं, महेश हैं और 21 ब्रह्मांड हैं, लेकिन तुमको वो सब जानने की जरूरत नहीं है। तुम जो भी भक्ति कर रहे हो वो तुमको पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, जैसे सारी नदियां समुद्र में मिल जाती है। लेकिन मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई, मेरे मन में ये बात आई कि सिर्फ वो नदी समुद्र में मिलती है जाकर के जिसमें पूरा पानी हो, सालों भर पानी रहता हो, और जिस नदी में थोड़े पानी हो तो समुद्र जाने से पहले पहले सूख जाती है, वो नदी तो समुद्र में मिलती नहीं है। तो मुझे उनकी बातों से ये हुआ नहीं, और इस बीच में मेरी पोस्टिंग त्रिपुरा हो गई। मैं वहां डेपुटेशन पे प्रिंसिपल बन के चला गया। वहां से लगभग साल भर के बाद 2004 मार्च में मैं वापस आ रहा था, मेरी फैमिली हिसार में ही थी। तो बस में जो दिल्ली में मैं आया, दिल्ली में मैं बस में बैठा हुआ तो पोस्टर में फिर बंदी छोर सतगुरु रामपाल जी का एक पोस्टर दिख गया, इनका पोस्टर। ये तो मैं भूल गया था इनकी बातें जो टीवी पे देखे थे इनके ज्ञान को, और वो सारे संतों से मेरी चर्चा हुई थी उधर जाने के बाद, क्योंकि 8-9 महीना टाइम गुजर गया था। मेरा दिमाग एक बार फिर वो चकरा गया और मेरे मन में ये बात आई कि कोई संत, सभी संत कहते हैं परमात्मा एक है और एक परमात्मा की भक्ति से हमारा मोक्ष होगा, और सभी संत के इष्ट देव अलग अलग, सभी के मंत्र अलग, सभी की साधनाएं अलग, सभी की क्रियाएं अलग, ये सारे संत अगर सच्चे हैं और सभी अलग अलग क्रियाएं साधनाएं बता रहे हैं तो इन सबको मिलकर के एक निर्णय क्यों नहीं निकाल लेते और हम भक्त समाज को भ्रमित जो करने से बचा लेते। इन सबको चाहिए था कि एक निर्णय निकाल करके और एक रास्ता हमें देते, और ये मेरे दिमाग में आई थी। और मैं फिर परेशान हो गया था, और जब हिसार में आया तो गुरु जी का सत्संग था, और एक दिन का सत्संग मुझे सुनने को मिला। दिन में सुना तो चूंकि इनका सारा ज्ञान जो पहले सुन रखे थे उससे नया था और मेरी बुद्धि में नहीं आ रही थी, लेकिन शाम को, ये मेरा टर्निंग पॉइंट था लाइफ में, शाम को 27 मार्च 2004 को जब शाम के सत्संग में आया तो उस समय गुरुजी प्रोजेक्टर पे ये बता रहे थे, अनुत्तम का अर्थ बताया उन्होंने। ये तो सभी को पता है, तीसरी क्लास के बालक को भी पता है कि घटिया होता है। और फिर एक शब्द व्रज था संस्कृत का, उसका अर्थ दो डिक्शनरी से उन्होंने बताया था गुरुजी ने, एक तो आमटे का था, दूसरा मुझे याद नहीं है। और व्रज का उन्होंने अर्थ किया था, दिखाया था डिक्शनरी में, जाना, चलना, प्रगति करना, दूर जाना, देश निकाला होना, प्रस्थान करना, इस तरह के अर्थ बताए थे। मतलब जाना होता है व्रज का अर्थ, गुरुजी ने ये क्लियर किया था। और उसके बाद उन्होंने संत आसाराम जी के अनुवादित गीता के श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर जो 66 था, उस श्लोक में ब्रज शब्द है और वहां पे आसाराम जी ने उसका अर्थ आना किया था, गुरु जी ने दिखाया प्रोजेक्टर पे। और फिर रामसुख दास जी का जो अनुवादित था गीता प्रेस गोरखपुर से जो प्रकाशित श्रीमद् भगवद गीता, उसमें भी ब्रज का अर्थ आना किया हुआ था कि मेरी शरण में आ जा। और इस अड़ंगे को सही साबित करने के लिए उन्होंने उतनी मोटी बड़ी बड़ी पुस्तक थी और उसके लगभग 17 पेज तक व्याख्या कर रखी थी। और उसके बाद उन्होंने सुधांशु जी महाराज की अनुवादित पुस्तक में भी व्रज का अर्थ आना किया हुआ दिखाया गुरुजी ने। जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो इतने बड़े फिलोसोफर माने जाते हैं, उनके नाम पे पूरा राष्ट्र शिक्षक दिवस मनाता है कि वो बेस्ट टीचर थे, बेस्ट प्रोफेसर थे और एक दार्शनिक थे और बहुत बड़ा विद्वान थे, और उन्होंने भी ब्रज का अर्थ आना किया था। ऐसे और कई अनुवादकों द्वारा, संतों द्वारा अनुवादित वो उन्होंने गुरुजी ने दिखाया था उस श्लोक में, ब्रजकार सभी ने आना किया था। इस्कोन वाले एक दिखाए थे जिन्होंने शब्दार्थ में तो ब्रजकार अर्थ जाना लिख रखा था, और जो संस्कृत श्लोक जो 18 गीता श्लोक नंबर अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 66 का जो अर्थ करने लगे तो वहां पर मेरी शरण में आजा कर दिया था। और दूसरे जो शब्द थे अनुत्तम, और सभी संतों ने, इन सभी संतों ने अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम किया था गीताजी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 का। जब ये दो श्लोक का अनुवाद प्रोजेक्टर पे गुरुजी ने बताया था तो मुझे ऐसा लगा कि इस पृथ्वी पे किसी भी संत के पास कोई भी आध्यात्मिक मार्ग नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। अगर उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान होता तो गीता के श्लोकों के अर्थों का वो अनर्थ नहीं करते, और अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम होता ही नहीं जो उन्होंने किया है, और व्रज का अर्थ जाना है जिसका अर्थ आना किया है। तो अगर ज्ञान किसी के पास, सत ज्ञान है, तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास है और पूरे पृथ्वी पे, क्योंकि जगत गुरु भारत ही रहा है, तो भारत से बाहर किसी संत के पास ये ज्ञान हो ही नहीं सकता। और भारत वर्ष में जो वर्तमान में जितने संत हैं, सभी से अनुवादित गीता से हमें ये स्पष्ट हो गया था कि किसी के पास कोई ज्ञान नहीं है। और मैं फिर उसी समय मैं नाम गुरु जी से ले लिया था, और मैं इतना सौभाग्यशाली था, आज मैं उस दिन को याद करके मैं भावुक हो जाता हूं। मैं और मेरा बेटा जो नाम एक बार भी नाम नहीं जपा, सुभाष था, और एक कोई और बुजुर्ग व्यक्ति थे, सिर्फ तीन व्यक्ति था। 27 मार्च 2004 को हिसार जो पुलिस लाइन में गुरुजी का सत्संग था, आज तो वहां कुछ कंस्ट्रक्शन हो गए हैं, और मुझे गोद में लेके पुचकार करके वो कहते थे, बेटा तुम्हारा भाग्य उदय हो गया, परमात्मा तुमसे राजी हो गए, तुम्हें मोक्ष मिलेगा और तुम्हें परमात्मा मिल गए। उन दिनों तो मुझे नहीं समझ में आता था, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि सचमुच हमें परमात्मा मिल गए, और मेरा जीवन और मेरा जन्म, मनुष्य जमन आज मैं सफल हो गया, और मैं धन्य हूं कि मुझे इनसे जुड़ने का, बंदी छोर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने का वो शुभ अवसर 27 मार्च 2004 को प्राप्त हुआ, मेरा जन्म हुआ, वास्तविक रूप में मेरा जन्म हुआ।
सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला?
संत रामपाल जी के महाराज से नाम लेने के बाद इतने लाभ हुए जिसका वर्णन हम करने लग जाएं तो कई घंटों गुजर जाएगा। जैसे इनसे पहले मेरे घुटने में दर्द थे, मेरे को सर्वाइकल भी हो गया था उन पूजाओं को करते करते, मेरे को पेट की बहुत एक्यूट प्रॉब्लम था, और मैं घी पिछले 8-10 वर्षों से नहीं खाया था, और उस कारण से मेरे शरीर बिल्कुल सूखा सूखा जैसे हो गया था, बिल्कुल बहुत कमजोर हो गया था। और इनसे नाम लेने के बाद मैं घी भी खाने लगा, पचने भी लगा, मेरे घुटनों के दर्द, मेरे डिस्क की प्रॉब्लम थी, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी, ये सारे ठीक हो गए। और इस तरह से जो मैं पैसों के पीछे दौड़ता था, उनसे जैसे आसाराम जी से नाम लिया हुआ था तो उन दिनों मेरे अशांति रहती थी अंदर से, सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं थी, आत्मिक संतुष्टि नहीं थी। मैं हर संतों के पास दौड़ता था कि वहां से कुछ मिल जावे, वहां से कुछ मिल जावे, लेकिन फिर भी हमें संतुष्टि नहीं थी। अब इनसे नाम लेने के बाद मुझे संपूर्ण आत्मिक संतुष्टि भी मिली और शारीरिक सुख भी मिला, और सबसे बड़ी बात है कि हमें वो पूर्ण संत, तत्वदर्शी संत मिले जिसके बारे में गीताजी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत को दंडवत प्रणाम करो और सरलतापूर्वक प्रश्न पूछो, तब उस परमात्म तत्व को ज्ञान देंगे। और उसको प्राप्त करने के बाद जो जिसका बारे में गीताजी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत मिलने के बाद उस परम पद की खोज करनी चाहिए जिसमें गए हुए साधक पुनः लौट कर ही संसार में नहीं आते, तो मुझे वो विधि मिल गई और मुझे वो संत मिल गए और मुझे वो परमात्मा मिल गए।
सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूं कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। सभी संतों ने मनुष्य जीवन की बहुत महिमा गाई है, सभी ने कहा है कि देवता लोग भी मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। ये तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी के शरण में आने से पहले भी वो अनाड़ी जो संत हैं वो भी ये बात को बताते थे, और हम यहां की साधना करके स्वर्ग लोग जाना चाहते थे। ये कितनी बड़ी दुविधा है, हमारी मूर्खता थी क्योंकि बिना तत्वदर्शी संत के ये अज्ञान हमारा मिट नहीं सकता था। मनुष्य जीवन, देवता भी अगर मनुष्य जीवन लेने के लिए तरसते हैं और मनुष्य जीवन प्राप्त करके अगर हम फिर भी स्वर्गलोक, जो जितने संत बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी के अलावे जितने भी संत हैं भारतवर्ष में वर्तमान में या पहले के सतयुग से लेकर आज तक, उनकी साधना स्वर्ग से अधिक की नहीं है। स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं और देवता लोग मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, तो ये बात उनको समझना चाहिए सारे भक्त समाज को कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके स्वर्ग प्राप्ति नहीं है। स्वर्ग से आगे रित धामा, जो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में बताया गया है, उस शाश्वत स्थान को प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शी संत की तलाश चाहिए। और वो तत्वदर्शी संत पूरे पृथ्वी पे बल्कि 21 ब्रह्मांड में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, इनके अलावे पूरे 21 ब्रह्मांड में इस पृथ्वी पे, इस भारत भूमि पे कोई संत है नहीं। तो मैं सभी भक्त समाज से ये अपील करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के मैं विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस अनमोल मनुष्य जीवन को शास्त्र विरुद्ध साधना करके बर्बाद ना करें। एक एक सांस की बहुत कीमत है, ये मौका बार बार नहीं मिलता। पृथ्वी पे पूर्ण परमात्मा कबीर देव संत रामपाल जी महाराज के रूप में स्वयं प्रकट हैं, ये तत्वदर्शी संत की भी भूमिका कर रहे हैं। इनके पास शास्त्र प्रमाणित ज्ञान है, इनके पास सारे मंत्र हैं, मोक्ष के कंप्लीट कोर्स हैं। इनसे जुड़ने के बाद आपको शारीरिक सुख मिलेंगे, सांसारिक सुख मिलेंगे, अर्थ धन मोक्ष और काम, ये सभी कुछ मिलेगा। पूर्ण मोक्ष को प्राप्त होंगे आप, जिसके बारे में कहा गया है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कि तत्वदर्शी संत मिलने के बाद उस परम पद परमेश्वर की प्राप्ति करनी ढूंढना चाहिए, उस परम पद को ढूंढना चाहिए जिसमें गए हुए साधक लौटकर पुनः इस संसार में नहीं आते। तो आपको वो पद मिलेगा जिसके बारे में गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में बताया गया है कि उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसके कृपा से तुम्हें परम शांति और शाश्वत स्थान को मिलेगा, को प्राप्त होगे। तो वो परम शांति और शाश्वत स्थान देने वाले तत्वदर्शी संत गीता जी अध्याय नंबर 4 के 34 वाले संत सिर्फ और सिर्फ बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं। इनके शरण में सभी भक्त समाज को आना चाहिए और वो मान बड़ाई को छोड़ के और वो झूठी साधना को छोड़ के आप साधना चैनल पे शाम को जो सत्संग आता है वो सुनिए। ज्ञान गंगा पुस्तक अगर आपको मिल जावे तो वो पुस्तक पढ़िए, सारा ज्ञान प्राप्त करिए। और अगर कोई भगत आपसे पूर्ण परमात्मा मोक्ष की भक्ति की और संत बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के बारे में कोई जानकारी देते हैं तो आप उनको ध्यान से सुनिए और परमात्मा की शरण में आकर के अपना मनुष्य जीवन को सफल करिए, पूर्ण मोक्ष वाली भक्ति को प्राप्त करिए। मैं भक्त समाज से यही निवेदन करना चाहूंगा।
सर थैंक यू सो मच।